आइए प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को झुकाएं। जब हमारे सिर और हृदय परमेश्वर के सामने झुके हुए हैं, मैं सोचता हूं कि यहां कितने लोगों के पास विनती है कि वे चाहेंगे कि परमेश्वर के सम्मुख रखें, बस अपने हाथ को उठाते हुए। अब जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने विनती को आपके हृदय में रखें। प्रभु यीशु, आप वो झरना है, जीवन का अविनाशी झरना, आज हम में से होकर बहें प्रभु, और हमें सारे अविश्वास और सारे पापों से शुद्ध करें, कि हम अब आपकी उपस्थिति के सामने खड़े हो सकें, यह जानते हुए कि हमारे बीच में आवश्यकता है, कि हम जानते हैं कि हम पापी हैं, किसी भी आशीष के योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर जब हम उसके विषय में सोचते हैं जिसने आकर और हमारे पापों को ले लिया, फिर जब उसका लहू वहाँ है, यह हम नहीं हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, यह तो वो है, यह बस उसके लहू के द्वारा हमारी आवाज है, उसका लहू बोल रहा है, हे परमेश्वर, तब हमारे हृदयों को पाप और अविश्वास से शुद्ध करें। हमारे हृदय की इच्छाओं को हमें दीजिए, क्योंकि हम में आपकी सेवा करने के लिए वास्तव में ये इच्छाएं हैं। इन कमजोर परिस्थितियों में और कष्टों में और संसार की चीजें जो हमें कभी कभी हम पर डाली जाती है, जिससे कि हम सिद्ध हो सके, हमें ये बताया गया है। तब उसने कहा, इस पर आश्चर्य न करो कि ये परीक्षाएं तुम पर आती हैं, वे केवल हमारे भले के लिए काम कर रही हैं और हमें सिद्ध बनाने के लिए और हमें उस स्थान पर लाने के लिए। अनुभव के ये बड़े बड़े रेगिस्तान जहां धर्मी लोगों को संतों के सांचे में ढाला गया है, हम इन अनुभवों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा कोई मतलब नहीं होगा, कोई भी बुद्धिमान आपकी इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं करना चाहेगा, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं पिता कि इसमें हम आपके नजदीक लाए जाएंगे। और जब बोझ बहुत ही भारी हो जाता है कि हम और आगे नहीं जा सकते हैं, तब हम हमारे हाथ को उठाते हैं और हमारे पिता की ओर चिल्लाते हैं, तब स्वर्ग से सुनना प्रभु, हमें चंगा करें, हमें ठीक करें परमेश्वर के राज्य के खातिर। आज सुबह आपके वचन को आशीषित करें प्रभु, आपका वचन सत्य है। और हम अब यहाँ कलीसिया में एकत्र हुए हैं, हम भाई नेविल के लिए और भाई कैप्स और भाई कॉलिंस के लिए प्रार्थना करते हैं, और बाकी सेवकगण और खजांची डीकनों और हरेक जन और हमारे द्वार पर आए परदेसी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। होने पाए यह एक ऐसा दिन हो जिसे हम आपकी उपस्थिति के कारण लंबे समय तक याद रखें। हम आज सुबह यहाँ बड़ी अपेक्षा में हैं प्रभु, एकदम से मिली सूचना में एक साथ इकट्ठा हुए हैं। हम महसूस करते हैं कि यह एक उद्देश्य के लिए है। होने पाए आपका उद्देश्य पूरा हो जाए प्रभु।
As we submit ourselves, amen.
क्योंकि हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, जैसा कि हम स्वयं को समर्पित करते हैं, आमीन। यहाँ होना और लोगों से भरे इस कलीसिया के साथ एकत्र होना शानदार बात है। मैं आज सुबह यहाँ शायद ही किसी के होने की अपेक्षा कर रहा था, क्योंकि मैं शायद यह भी नहीं जानता था मैं यहाँ आने वाला हूँ। हम अभी अभी फिलाडेल्फिया से आए हैं, और सो मैं आया यह सोचते हुए कि मुझे जल्दी तुरंत ही एरिजोना के लिए निकलना होगा। मेरे एक मित्र कैप्टन जिम मोसले के लिए, जिनकी अंतिम संस्कार की सभा है, एक बहुत ही बहुमूल्य धर्मी लड़का, ज्यादा समय नहीं हुआ मैंने मसीह की ओर अगुवाई की उन तीन मोसले भाइयों की, और उनमें से एक गिर गया, और एक दिन वो हवाई जहाज में था और तुरंत ही खत्म हो गया, 10 घंटे तक आग में पड़ा रहा इससे पहले कि वे उसके पास पहुंचते। तो ली 28 वर्ष का है, उसकी पत्नी 26 वर्ष की है, और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गया है, सबसे छोटा बालक 7 वर्ष का है। बहुत ही दुख की बात है। वे और जब वे उसे अंदर ले गए तो उन्हें अगले दिन उसे दफनाना था, तो मैं बस मुझे नहीं जाना था, और मैंने बस लिखा या टेलीग्राम के द्वारा भेजा जो मैं कहने जा रहा था, या जो मैं भाई मोसले के अंतिम संस्कार में कहने वाला था। इसमें से कुछ चीजों को हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वह हर एक काम को बस सही करता है। हम यहाँ आज सुबह प्रभु की सेवा में हैं, यह जानते हुए कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कि हमें विश्वास है कि वो हर एक चीज को बिल्कुल ठीक कर देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है और यह कैसे काम करता है, हम जानते हैं कि इसे भलाई के लिए काम करना है, उसने ये प्रतिज्ञा की है, इसे बस इसी तरह से होना है। कभी कभी हम ये समझ नहीं पाते, कई बार बहुत ही उलझता जाता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि यह सत्य है, क्योंकि बाइबल कहती है कि यह सत्य है, और बाइबल हमारे लिए अक्षर रूप में परमेश्वर है। अब हमें अपने विश्वास को कहीं तो रखना है, और यदि मैंने या हम में से किसी ने भी जीवन में सफल होने की और बहुत बार करोड़पति बनने की कोशिश की है, लेकिन हम इन पैसों के साथ क्या करेंगे? हमें मार्ग के अंत में आना ही होगा, और तब हमारे लिए ये क्या भला करेगा, समझे? और पैसा एक पर्ची है, इससे एक अदला बदली करते हैं, लेकिन आप इसे जीवन के लिए अदला बदली नहीं कर सकते। जीवन केवल परमेश्वर के पास है। तो हम यह महसूस करते हैं कि हम यहाँ एक नेगेटिव रूप में हैं, और जब तक वहाँ एक नेगेटिव है, वहाँ पर एक वास्तविक को होना है। वास्तविक के बिना नेगेटिव नहीं हो सकता है, देखो, क्योंकि ये वास्तविक के कारण ही नेगेटिव बनता है। जैसे आपके पास किसी वस्तु की नेगेटिव तस्वीर होती है, कहीं कोई तो एक वस्तु होनी चाहिए, या टकराने के लिए प्रकाश उस लेंस से टकराता है, नहीं तो वहाँ कोई नेगेटिव नहीं होगा। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ हमारा जीवन नेगेटिव में है, और ये जानते हुए कि हम कहीं न कहीं किसी जीवन की छवि में है, तब हम जानते हैं कि कहीं न कहीं तो एक वास्तविक है कि जिस पर प्रकाश चमका है, और यह यहाँ धरती पर कुछ तो प्रतिबिंब हुआ है, और हम तो केवल वो प्रतिबिंब हैं, वास्तविक वस्तु कहीं पर तो है। यदि ऐसा नहीं है तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा भरमाया हुआ मनुष्य हूँ। मैंने अपना जीवन व्यर्थ में बिताया है, लेकिन मैं जानता हूँ संदेह की छाया से परे यह वहाँ पर है, समझे? इसीलिए हम यहाँ पर हैं। देखा, जब मैं देखता हूँ कि आप लोग सारे देश भर से आते हैं कुछ क्षणों की सूचना में, और कभी कभी यह मानता हूँ जब मैं इस तरह की सभा में आता हूँ, तब यह मुझे यह वास्तव में छोटा महसूस करने को लगाता है, यह सोचकर कि मैं जानता हूँ कि यहाँ लोग सैकड़ों मील की यात्रा करके आए हैं, बस कुछ मिनटों की सभा में यहाँ पर होने के लिए, बस यहाँ पर बैठने के लिए। किसी महिला ने हाल ही में एक टिप्पणी को किया, एक दिन आकर और कहा, मुझे दिखाओ कि वो मनुष्य कहाँ कहाँ पर चला है, और मैं उसके पीछे पीछे उस जमीन पर चलूंगी, कहा तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अब लोग आप पर इस तरह से विश्वास करते हैं, और आप मसीह के एक प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप न ही केवल खुद को गलत तरीके से नष्ट कर रहे हैं, आप दूसरों को भी नष्ट कर रहे हैं जो आपका अनुसरण करते हैं। इसलिए मैं जानता हूँ ना कोई संप्रदाय या कुछ भी आपको वहाँ ले जाएगा, वहाँ केवल एक ही चीज है जिस पर मुझे विश्वास है। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो जो मैं आपको बताता हूँ उसका अनुसरण करें, क्योंकि मैं बाइबल का विश्वास करता हूँ, यही परमेश्वर का वचन है। बाकी चीजें विफल हो जाती हैं, मैं बस वो जीवन है, वो वचन है। अब मैं जानता हूँ कि आप, जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं आपको लंबे समय तक रोके रखता हूँ। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, जब मैंने महसूस किया कि मैं आज यहाँ आना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे इंटरव्यू थे और फोन आए थे और इत्यादि, मुझे आज सुबह उनमें से कुछ लोगों से भेंट करना था, और मैंने कहा तो ठीक है भाई नेविल, कोई संदेह नहीं, मुझे बोलने के लिए कहें। यह शुक्रवार था, और मैंने कहा भाई नेविल, हो सकता है मुझे बोलने के लिए कहेंगे, और जब मैं प्रचार करता हूँ तब मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर यह बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्म, और वो भला था कि हमारे लिए बारिश को भेजने और वास्तविक अत्यधिक गर्मी को खत्म करने के लिए, और आज सुबह हमें एक अच्छी सुबह देने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसकी भलाई आप में से सभी पर बरसेगी, कि आज सुबह यहाँ होना आपको हमेशा याद रहेगा, होने पाए आप पर उसका अनुग्रह और आशीष बनी रहे। कल रात मैं एक बीमार मित्र भाई बिल डॉस से मिलने गया, मैं उसे आज सुबह यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, किसी तरह मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ओह, वो यहाँ है, वो, जी हाँ, और मैं सोच रहा था 90 वर्ष का एक बूढ़ा मनुष्य, और अब भी वो देश भर में तूफान में से, रेगिस्तान में से होते हुए और बर्फीले पहाड़ों और चिकनी सड़कों को पार करता है। उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर उसके प्रति भला रहा है, उसे यह नहीं करना है। यदि वो चाहता तो घर पर बैठ सकता था और नौकरों को पंखा हिलाने को लगा सकता था, लेकिन बिल डॉज को कुछ तो हुआ, उसका फिर से जन्म हुआ था, और जब ऐसा था उसके हृदय में कुछ तो आया कि वो केवल इन सभाओं में सम्मिलित होने के लिए जीता है। और फिर यदि मुझे परमेश्वर का मुख बनना है तो क्या मैं ऐसे मित्र को भरमाऊं? अन्यथा मैं तो मर जाऊंगा। तब मुझे उसे बताने दो कि वास्तव में इस बाइबल की सच्चाई क्या है। फिर यही परमेश्वर का वचन है, मैं तो बस वही दोहरा रहा हूँ जो उसने कहा है। अब मैं बाइबल में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम पढ़ें, मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं सोचता हूँ कि आज की रात प्रभु भोज की रात है, और आप जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, बेशक अन्य लोग हो सकता है अपने घरों को वापस जाएंगे क्योंकि उन्हें काम पर जाना है। आप यहाँ पर जो स्थानीय लोग जो सभा में हैं, याद रखें, भाई लोग आज रात प्रभु भोज देने जा रहे हैं। अब मैं अफ्रीका के लिए अंतिम बुलावट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वे नहीं, मुझे एक मिशनरी के रूप में नहीं आने देना चाहते। सो केवल एक जरिया है जिससे मैं वहाँ जा सकता हूँ। वहाँ मैं केनिया, युगांडा और तांगानिका जा रहा हूँ, और एक ही जरिया है जिससे मैं वहाँ जा सकता हूँ। सबसे पहले कलीसियाएं आपको वहाँ पर नहीं जाने देंगी, क्योंकि वहाँ अफ्रीका में वे चाहते हैं कि मैं कुछ तो इस ओर और उस ओर प्रचार करूं, और मैं इस तरह वहाँ पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं ऐसा करके इतना ढोंगी नहीं बनना चाहूँगा। सो मैं या तो उनसे कहूँगा, नहीं श्रीमान, मैं केवल वही प्रचार करूँगा जो परमेश्वर मेरे हृदय में डालता है, और बस ऐसा ही है, देखा। और मुझे यकीन है कि ऐसा तो नहीं होगा जो वे कोशिश कर रहे हैं, मैं इस तरह से सिखाऊं तो त्रिएक का बपतिस्मा और इस तरह से इत्यादि करूं और उनके साथ वाद विवाद करूं, नहीं। लेकिन मुझे भाई भोज के द्वारा एक बड़े कन्वेंशन को करने के लिए मांगा गया है। वो बस उस कगार पर हैं कि कुछ दिन उजाले को देखें जो हम विश्वास करते हैं, और इसलिए मैंने वहाँ आने के लिए पूछा है। जैसे मैं शिकार यात्रा पर जाता रहा हूँ, यदि उन्होंने मुझे वहाँ पर जाने दिया, जैसे शिकार में जाना, यदि मैं किसी से कह सकूँ कि वे मुझे शिकार पर ले जाएं, फिर जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ पर जो डॉक्टर दूतावास में है, वो शिकागो से मेरा एक गहरा मित्र है, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वो कहता है, तो ठीक है, यहाँ पर भाई ब्रैनम है, आइए एक सभा को करेंगे। इसलिए मेरे वहाँ होने के बाद दूतावास मुझे ठुकरा नहीं सकता, यदि वे, इसलिए वे इसे अब इसके जरिए से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भरोसा करता हूँ कि यह, यदि यह परमेश्वर की इच्छा है, तो यह उस तरह से काम करेगा, समझे। इसे बस उसको सौंपा गया है। यदि नहीं तो मैं आपको सूचित करूंगा। मैं नहीं, यदि ये परमेश्वर की इच्छा है, तो मैं सात तुरहियों पर बोलना चाहता हूँ, और ये लगभग 8 दिवसीय सभा होगी, और हम हो सकता है यहाँ टैबरनेकल में नहीं करेंगे, हम यहाँ एक सभागार को लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह नया सभागार बस यहीं पर निर्माण हो रहा है। यह बिल्कुल ठीक वहाँ है जहाँ मैंने यीशु को पहली बार दर्शन में देखा था। अब यह बन चुका है, ठीक उसी स्थान पर सभागार बनाया गया है। मैं एक दिन देखने के लिए वहाँ पर गया। जब मैंने देखा और उसे पूर्व की ओर देखते हुए देखा, आपने मुझे इसे कहते हुए सुना होगा, याद होगा, जब मैं वहाँ अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रहा था, एक छोटा सा लड़का, बस एक लड़का प्रचारक, वहीं पर मैंने उसे देखा, बढ़ते उसकी ओर देखते हुए उसने अपने सिर को मुझसे उस ओर घुमाया हुआ था। मैं अपने गले को साफ कर रहा था, यहाँ से वहाँ घूम रहा था, सफेद फूलों वाली झाड़ी के खेत में, और मैं देखता ही रहा, और वो कभी भी मुड़ा नहीं। तब मैंने उसके नाम को पुकारा, यीशु, और वो पीछे मुड़ा, उसने अपनी बाहों को फैला दिया, और यही सब मुझे दिन के उजाले तक याद रहा। और सो मैं खेत में से बाहर आया दिन के उजाले की ओर। तो हो सकता है प्रभु मुझे वहाँ पर उन तुरहियों का प्रचार करने देगा। जहाँ भी हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। अब अपनी बाइबलों को खोलें, यशाया का 50वां, यशाया का 53वां अध्याय। अब हमें भरोसा है कि परमेश्वर आज सुबह एक साथ आने के हमारे निर्बल प्रयासों को आशीष देगा। हम अभी अभी फिलाडेल्फिया से यहाँ आए हैं, जहाँ पर मैं फुल गॉस्पल बिजनेसमैन कन्वेंशन में था, और वहाँ पर उनकी भिन्न भिन्न गवाहियों और आदि को सुन रहा था। तब मैं वहाँ रास्ते पर, मैं, बिली पॉल और मैं, और रिबिका और छोटी कॉलिंस लड़की, छोटी बेटी कॉलिंस थे, और बिली एक बहुत अच्छा सोने वाला है, और बेकी उससे बेहतर सोती है, और इसलिए मैं, बेटी और मैं बात कर रहे थे, और वह बेकी के साथ पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, और मैंने सड़क पर कुछ देखा, कुछ हुआ, और जब मैंने देखा कुछ तो मुझ पर प्रेरणा उतरी, और बेटी, यदि वो यहाँ है तो उसने ध्यान दिया कि मैंने बात करना छोड़ दिया और कुछ तो लिखना आरंभ कर दिया। यहीं से जहां मुझे आज सुबह के लिए यह विषय मिला। अब आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। यदि हम अब हम परमेश्वर के वचन के आदर में खड़े हो जाएं, जब मैं यशाया के 53वें अध्याय को पढ़ता हूँ, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। ध्यान दें, आरंभ से ही यह एक प्रश्न है, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया और तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसे बंदी गृह से और न्याय से उठा लिया गया था और उसके वंश की घोषणा कौन करेगा। वो जीवतों के बीच में से उठा लिया गया, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा और वो बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी और वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और वो अपराधियों के संग गिना गया। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। पिता परमेश्वर, आपका वचन एक दीपक है, वो उजाला जो प्रत्येक विश्वासी के मार्ग को परमेश्वर की उपस्थिति में रोशन करता है। जैसे ये हमें हमारे हाथ में लालटेन को लिए हुए इस तरह आगे ले जाता है। आपने इतना अधिक प्रदान नहीं किया कि हम आरंभ से ही अंत को देखें, और लेकिन मैं विश्वास के साथ चलता हूँ। लेकिन जैसे एक मनुष्य रात में एक अंधेरे जंगल में से होकर यात्रा करता है और हम वहीं पर हैं, वो उजाला जिसे वो लिए हुए होता है, यह उजाला केवल कदम दर कदम ही उजाले को प्रदान करता है। लेकिन वो पथ जो ऊपर की ओर ले जाते हुए केवल उजाले के साथ चलें और होने पाए वो उजाला आज वचन पर चमके, ताकि हमें परमेश्वर के राज्य की ओर एक कदम और आगे ले जाए, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। बैठ जाएं। वो विषय जिस पर आज मैं सभा के लोगों से बोलने के लिए महसूस कर रहा हूँ, वो है सर्वोत्तम रचना। ये इस तरह के एक वचन को लेकर पढ़ना बल्कि अनोखा सा लग सकता है। बाइबल की एक सबसे चोट पहुँचाने वाली और घातक तस्वीरों में से एक, कि जब बाइबल कहती है कि यह सिद्ध दास जो पीड़ित हुआ था और कुचला गया और चीरा गया था, और फिर भी उसमें से एक विषय को लेना जैसे सर्वोत्तम रचना बहुत ही अनोखा है। लेकिन मैं मेरे मन में आज सुबह विचार आ रहा था, जब हम वापस यात्रा करेंगे, मैं करता हूँ कुछ वर्षों के लिए, मुझे फॉरेस्ट लॉन में आमंत्रित किया गया था, कैलिफोर्निया में जो लॉस एंजलिस के ऊपर है। वहाँ पर जाने का मेरा पहला उद्देश्य था कि वहाँ सैंपल मैकपर्सन की कब्र के दौरे पर जाऊँ, जो फोर स्क्वायर आंदोलन की संस्थापक थी, और मैं उसकी कब्र पर गया। और हालांकि एक सेवक की नाई, मैं महिला के प्रति भिन्न रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में मैं प्रशंसा और आदर करता हूँ, क्योंकि जिस बात के लिए वो खड़ी थी उस घड़ी में, और जब तक वो धरती पर रही उस घड़ी तक वो सतावट और चीजों में से होती हुई गई, और फिर उसके प्रिय पुत्र के लिए जो मेरा एक गहरा मित्र है रॉल्फ मैकपर्सन, और सेवकों का एक झुंड, हम वहाँ पर गए। वे और हमारे पास जाने का समय नहीं था, वो उस स्थान के अंदर जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ है, और उन शरीरों को दीवार के किनारे पर एक छोटे से बक्से में डालते हैं, और वहाँ उनके पास कुछ अलग ही बातें हैं, जैसे कि अंतिम भोज और यह सूर्य के वास्तविक प्रकाश से प्रकाशमान होता है, और उनके पास एक बंद करने का किवाड़ है जो उन्हें देता है जब वे अंदर जाते हैं, तो ये प्रकाश देता है, और फिर जब बस वे बोलना शुरू करते ये अंधेरा हो जाता, और कुछ देर बाद पूरी तरह घोर अंधेरा हो जाता है, और फिर लोग बाहर निकल जाते हैं और वे पूरा भोज लेते हैं। और वो महिला जो रहस्य को जानती थी कि इस शीशे को इस स्थान के अंदर कैसे मारना है, इसलिए इन तस्वीरों को बनाए, क्योंकि यह बहुत वर्षों पहले एक परिवार में से होते हुए आई, और ये कला केवल संतान को दी गई थी, और यह एक आखिरी महिला थी, और वे इस तस्वीर को तैयार कर रहे थे, और जब वे उस शीशे को सांचे में ढालकर और जलाने को गए इसे गर्म करने, जो यहूदा इस्करियोतियों की थी, तो ये टूट गई। तो फिर उन्होंने इसे फिर से करने की कोशिश की, और यह फिर से टूट गई, और उसने कहा हो सकता है कि हमारा प्रभु नहीं चाहता कि उसके शत्रु की तस्वीर उसके साथ में लगे, और कहा यदि यह फिर से टूट जाता है तो हम तस्वीर को पूरा नहीं करेंगे, लेकिन यह उस समय लग गई। फिर निश्चित रूप से यह एक आश्चर्य करने वाली बात है, और ऐसी चीजें किस तरह से हो जाती हैं। लेकिन फिर मुख्य चीजों में से एक चीज जिसने मेरा ध्यान उस जंगल के मैदान की ओर खींचा, वो माइकल एंजेलो था, वो महान मूर्तिकार उस मूसा के स्मारक ने। ये वहाँ एक पुनः उत्पादन था, निश्चय ही ये मूल नहीं है, लेकिन ये क्या ही एक महान सर्वोत्तम रचना थी। और जब मैंने खड़े होकर और इसे देखा, मुझे ये पसंद आया। कुछ तो ऐसा दिखाई देता था जैसे ये प्रतिनिधित्व करता है, उसमें कुछ तो है। मैं कला को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर कला में है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर संगीत में है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर प्रकृति में है। परमेश्वर हर कहीं पर है, और जो कुछ भी मूल के विपरीत है वो बिगड़ा हुआ रूप है। परमेश्वर नृत्य में है, ना ही उस तरह का नृत्य जो आप यहाँ करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के पुत्र और कन्या परमेश्वर की आत्मा में होते हैं, देखो तो यही वो नृत्य होता है। लेकिन जैसे आज सुबह 2 बजे तक वहाँ उस रास्ते पर नृत्य की होर लगी रहती थी, यह उसका बिगड़ा हुआ रूप है। लेकिन यह और वो सर्वोत्तम रचना जो माइकल एंजेलो ने बनाई थी, ऐसा करने के लिए उसे कुछ तो इसका भुगतान करना पड़ा। वो एक महान मनुष्य था, और इसके लिए उसके जीवन के एक बड़े भुगतान को चुकाना पड़ा था, क्योंकि उसे काट छाट कर तराशने में कई कई वर्ष लगे थे। बस एक संगमरमर की चट्टान को लेकर और इसे तराशते रहना, और देखिए केवल वो मनुष्य खुद मूर्तिकार जो उसके दिमाग में है उसे वो करने की कोशिश कर रहा है, वो एक है। आप वहाँ चलकर जा सकते हैं और उससे कह सकते हैं, आप उस बड़े पत्थर पर किस लिए छेनी से मार रहे हैं। बाहरी व्यक्ति के लिए जो नहीं जानता कि उसके हृदय में क्या है, यह बकवास है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो खुद मूर्तिकार है, उसके पास उसके मन में एक दर्शन था जिसे वो बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसके मन में जो कुछ भी है वो उसे एक स्मारक के रूप में पुनः उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि वो इसे चट्टानों में से खोदकर निकाल रहा है, और ऐसा करने के लिए आपको शुरुआत में सही से आरंभ करना होता है और आपको नमूने को समझना होगा। देखा, शुरू करने के लिए आप एक छोटे से टुकड़े को नहीं ले सकते हैं, हम इसे इस तरह बनाएंगे, नहीं मैं सोचता हूँ, नहीं, उसके पास एक सही नमूना होना चाहिए, और उसके दिमाग में वो नमूना था और वो उस नमूने से भिन्न नहीं हो सकता। अब ऐसा करने के लिए उसे अपने मन में चित्रित करना था, क्योंकि हमारे पास मूसा की कोई वास्तविक तस्वीर नहीं है, लेकिन उसे अपने दिमाग में एक मानसिक तस्वीर को बनाना था, ठीक बिल्कुल वही जो मूसा था। अब एक सच्चा मूर्तिकार प्रेरणा पाया हुआ होता है, जैसे एक सच्चा कवि या कोई सच्चा गायक, संगीतकार, चाहे ये कोई भी हो, सारे वास्तविक को प्रेरणा से आना है। माइकल एंजेलो के पास अवश्य ही वो प्रेरणा थी कि वास्तव में मूसा कैसा दिखाई देता था, और उसने इसे अपने मन में पकड़ लिया कि मूसा अवश्य ही कैसा रहा होगा। सो उसने संगमरमर के एक इस बड़े टुकड़े को आगे रखा, उस नमूने के अनुसार काटता है और नीचे लाकर और उसे तराशने लगता है, जब तक कि उसके मन में की जो उसकी वास्तविक तस्वीर रही होगी उसे नहीं मिल जाती। और उसके बाद जब उसे यह पूरी तरह बिल्कुल सिद्ध पाया, हर एक कोने में, हर एक स्थान को रगड़ा और आंखें बिल्कुल सही सही, हर एक बाल और दाढ़ी बिल्कुल वैसा ही जैसा वो था, वो खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। मैं सोचता हूँ कि कई कठिन वर्षों का परिश्रम और किस तरह से उसे हर समय उसी दर्शन को अपने मन में बनाए रखना था जो वो करने जा रहा था। और जरा सोचें, इतने वर्षों से उसके मन में वो दर्शन था कि इसे बिल्कुल ठीक वैसा ही दिखने को लगाए जो ये था। उसने पहले दर्शन को समझा और कैसे उसे उस दर्शन के अनुसार काम करना था, काटकर और तैयार करना, और जब वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसने उसे सिद्ध पाया, जब तक कि वो वास्तव में सिद्ध नहीं दिखा, वो खड़े होकर और उसकी ओर देखने लगा। जब उसने उस सुबह को समाप्त किया हाथ में हथौड़े को लिए हुए, और जब उसने इसे देखा तो वो बहुत ही प्रेरणा से भर गया, क्योंकि उसके मन का दर्शन उसके सामने खड़ा हुआ था। वास्तविकता में उसने जो देखा था और उसकी धारणा कि मूसा कैसा था, वहाँ ये खड़ा था जो उसके सामने आ गया था, उसके पास उसके हृदय में इतने वर्षों से जो था, और परिश्रम और दुख और परेशानियों के घंटे और निंदा करने वाले और बाकी की हर एक चीज, लेकिन फिर भी वो उस दर्शन के साथ बना रहा जब तक ये पूरा न हो गया था। और फिर जब ये पूरा हो गया तो वो हाथ में हथौड़े को या मूर्तिकार की हथौड़ी को उसके हाथ में लेकर खड़ा हो गया, और उसने उस स्मारक की ओर देखा और दर्शन की प्रेरणा जो उसने देखा था कि उसे किस तरह से करना है, उसे इतना प्रेरणा से भर दिया, इतना तक कि वो प्रेरणा उस पर उतर आई, यहाँ तक वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे इसके घुटने के पास दे मारा और कहा, बोल। अब वहाँ उस बड़ी मूर्ति में घुटने पर, दाहिने घुटने पर वहाँ एक दरार है, घुटने के ठीक ऊपर लगभग 6 इंच का उस एक स्थान पर मैंने उस पर अपना हाथ डाला है, लगभग इतना गहरा है। उसने इतना समय बिताया था, उसके बाद वर्षों और वर्षों तक इसे बनाने में लगा दिए, फिर उस प्रभाव के नीचे ये देखते हुए जो उसने अपने हृदय में देखा था और अपने दर्शन में देखा था पूरा हुआ था, और जो देखने की इच्छा थी यह पूरा हुआ था। और जब ये पूरा हुआ था तो वह इससे इतना प्रेरित हुआ कि यहाँ तक उसने सोचा कि उसकी अपनी सर्वोत्तम रचना उससे बात करना चाहिए, और उसने इसे पैर के पास दे मारा और चिल्लाया, बोल, और इसने उस पर एक दरार को बना दिया, इसने मूर्ति पर एक दरार बना दिया। मेरे लिए ये वो दरार थी जिसने इसे सर्वोत्तम रचना बना दिया। अब हो सकता है उस दिमाग के लिए जो भिन्न सोच सकता है, आप सोचेंगे कि इसने बिगाड़ दिया, नहीं, मेरे लिए इसने इसने इसे वो बनाया जो ये थी। यह इतने वर्षों के सावधानी पूर्वक काम करने और परिश्रम करने के बाद और प्रेरणा और इत्यादि इसे बनाने में लगे, उसका परिश्रम व्यर्थ साबित नहीं हुआ था, यह सिद्ध थी। और इसलिए वो चिल्ला उठा, बोल, क्योंकि उसने इसे उसके सामने देख लिया था, जिस लक्ष्य को पूरा करने में वो हुआ था, सक्षम हुआ था, उस दर्शन को पूरा करने के लिए जो उसके मन में था। और इसलिए प्रेरणा के नीचे उसने कुछ तो ऐसा किया जो सामान्य से हटकर था। उसने इसे दे मारा और चिल्लाया, बोल। देखो, यदि उसने सोचा होता तो वो ऐसा नहीं करता, लेकिन उसने नहीं सोचा। यह प्रेरणा थी उसे देखते हुए जो उसके मन में था, वो उसके सामने सिद्ध रूप से खड़ी थी। उसके परिश्रम और थकावट और लंबी रातें और दुनिया से दूर कई दिनों तक, और हो सकता है वो एक सैंडविच को खाता हो और इस पर रगड़ता और पीछे जाता, और नहीं, ये बस इस तरह से नहीं था, अब इसे इस पर नीचे आना है और इसे रगड़ता। फिर जब उसने इसे देखा एकदम सही सही, तो उसने वास्तविकता में देखा जो उसके मन में नेगेटिव था उसका वास्तविक बन गया था, यह वास्तविक हो गया था। इसलिए ये उसके अंदर उछल पड़ा, और ये इतना वास्तविक था कि उसे चिल्लाना ही था, बोल। मेरे लिए यह एक प्रतिबिंब था, ये उसके काम की तारीफ थी कि उसके अपने खुद के काम ने उसे इतना प्रेरित कर दिया कि वो इसे मारने और कहने के लिए अपने आपे में नहीं रहा होगा, बोल। मैंने वहाँ खड़े होकर और उस स्मारक की ओर देखा, मैंने सोचा कि उस मनुष्य ने इसे बनाने में अवश्य ही बहुत घंटे लगाए होंगे। उन्होंने कहा कि काफी वर्ष लग गए थे, लेकिन यह उसके लिए एक प्रतिबिंब था, क्योंकि यह उसकी महान कला का एक योगदान था, उसका महान काम वो जो कर रहा था। और जब वो अंत में इसे पूरा करने में सक्षम हुआ, तो यह बहुत जबरदस्त था। अब हम माइकल एंजेलो के पन्ने को पलटते हैं और किताब को बंद करते हैं। और आइए एक और किताब को खोलते हैं और उस महान मूर्तिकार स्वर शक्तिमान के बारे में पढ़ें। जो इससे पहले एक दुनिया थी और इससे पहले बुनियाद को डाला गया था, उसके मन में वो था जो वो चाहता था, और वो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाना चाहता था। वो वास्तव में कुछ तो बनाना चाहता था उसके लिए जो उसके दर्शन में था, जो उसकी सोच में था। अब माइकल एंजेलो के लिए ये उसके विचार का एक गुण था, और परमेश्वर अपने स्वरूप के अनुसार एक मनुष्य को बनाना चाहता था, वो महान मूर्तिकार, और वो उस पर काम करने लगा। और हम देखते हैं जब उसने इसे भौतिक वस्तुओं में से बनाया, तो पहले शायद मछलियाँ थी, और उसके बाद पक्षी, और फिर धरती पर रेंगने वाले जंतु, और बहुत सारी चीजें थी जो उसने लाई। लेकिन अंत में जब वो मंडराया, रचनाकार होने के नाते उसके पास वो एक मनुष्य की तरह नहीं था, अब एक मूर्तिकार जिसे कुछ तो ऐसी चीज को लेना होता है जिसे बनाया जाना है, एक मूर्ति को तराशने के लिए। वो अनंत वस्तुओं का मूर्तिकार था, वो एक मूर्तिकार था जो बना सकता था और अस्तित्व के अंदर ला सकता था उसे बनाने के लिए जो उसके मन में था, या अन्यथा वह वस्तुओं को बना सकता है जो उसके गुण चाहते थे। और जब वो रेंगने वाली चीजों पर काम करना आरंभ करता है, जैसे वो धरती पर के छोटे छोटे जानवर, और उसके बाद वो इसे उसमें से किसी और चीज में लाना आरंभ किया, सबसे उच्च, उसके बाद अंत में वो इसे शेर, बाघ, भालू जैसे बड़े जानवरों में ले आया। उसके बाद वो इसे उस जीवन में लाया शायद बंदरों का, वानरों और इत्यादि का, अब ना ही एक प्रजाति का विकास जैसा कि हम सोचते हैं कि एक उसमें से आया है, वो एक संपूर्ण रचना थी, परमेश्वर एक स्वरूप में काम कर रहा है। लेकिन अंत में धरती के ऊपर एक आया, एक सिद्धता, और वो एक मनुष्य था, और फिर वो उस मनुष्य में देख सकता था कि वो उसके जैसा दिखता है। सो अब जब उसने उसकी ओर देखा तो वो उसके सृष्टिकर्ता का प्रतिबिंब था। परमेश्वर अब उस चीज को प्राप्त करने में सक्षम हुआ था जो वो चाहता था, एक मनुष्य उसके अपने स्वरूप में। और तब इस पर मैं कह सकता हूँ कि जब उसने इस मनुष्य को बनाया, उसके विषय में अभी भी कुछ ऐसा था जो बस सही नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि वो अकेला था। और ऐसा ही परमेश्वर था, अकेला, वो अनंत था। और मनुष्य अब परमेश्वर के स्वरूप में धरती पर स्वयं अस्तित्व में अकेला था, इसलिए उसने अवश्य ही उसके बाईं ओर थोड़ा सा प्रहार किया होगा, और वहाँ से उसने उसमें से टुकड़े को लिया जो उसमें से निकाला, और उसे उसके लिए एक सहायक, एक पत्नी बनाया। फिर वो अकेला नहीं था, वह उसके साथ कोई तो था, और यही उसका महान कार्य है। और वो किसी भी महान मूर्तिकार के नाई, उसकी सर्वोत्तम रचना को लेकर। अब पहले उसके पास स्वयं की एक सर्वोत्तम रचना थी, लेकिन अब उसने देखा कि वो सर्वोत्तम रचना अकेली थी जैसे वो अकेला था, इसलिए उसने सर्वोत्तम रचना को उसके बगल में प्रहार करके विभाजित किया और एक सहायक को आगे लाया। और अब दोनों को एक बनाने के लिए वो उन्हें एक स्थान पर रखता है, किसी भी महान मूर्तिकार के जैसे, जो सुंदर स्थान था। एक मूर्तिकार एक महान सर्वोत्तम रचना को बनाकर और उसके बाद उसे लेकर और वो इसे किसी गली में कहीं तो या उसे इमारतों के पीछे छिपाकर नहीं रखेगा, जैसा कि हमारे प्रभु ने हमें बताया, एक मनुष्य एक दीवट को जलाकर और उसे पैमाने के नीचे नहीं रखता है। जब हम परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना बन जाते हैं तो हम कहीं गली में नहीं छिपे होते, हमें अवश्य ही उज्याला देना है। सो हम देखते हैं कि उसने इस सर्वोत्तम रचना को बनाने के बाद उसने इसे यहाँ धरती पर रख दिया और उसे वहाँ के सबसे सुंदर स्थान में रख दिया जो अदन की वाटिका में था। उसने अपनी सर्वोत्तम रचना को रखा, वे दोनों एक थे अदन की वाटिका में। उसे अवश्य ही कितनी प्रसन्नता हुई होगी जब उसने देखा कि यह सर्वोत्तम रचना अच्छी थी। वो उसके बाद हम देखते हैं कि उसने विश्राम किया, वो अपने काम से बहुत ही खुश था। अब यह याद रखना, मेरी राय में सर्वोत्तम रचना को वो प्रहार जिसने उस स्मारक में संत एंजिलो के मूसा की सर्वोत्तम रचना को बिगाड़ दिया, और यह वो प्रहार था जिसने उसकी सर्वोत्तम रचना के किनारे को काट दिया, जिसने दुल्हन को बाहर लाया। और अब हम उन्हें अदन की वाटिका में एक सर्वोत्तम रचना परिवार के नाई देखते हैं। ये कितना सुंदर था, और इसने उसे बहुत ही प्रसन्न किया, इतना तक कि उसने तब विश्राम किया। उसने बोला, मैं विश्राम करूंगा। लेकिन जब वो विश्राम कर रहा था और अपनी सर्वोत्तम रचना पर भरोसा कर रहा था, तो उसका शत्रु अंदर आ गया और उसने इस सर्वोत्तम रचना को पाया, और वह छल से वो रेंगता हुआ उस वाटिका की दीवारों के नीचे से आता है, और उसके बाद उसने इस खूबसूरत सर्वोत्तम रचना को दूषित कर दिया। उसने इसे दूषित कर दिया सो जिससे कि यह गिर गई। अब मैं उस घड़ी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने अपने भतीजे माइक को 30 मिनट में घंटी बजाने के लिए कहा, लेकिन मैं उसने ऐसा नहीं किया है, और मुझे पहले ही 30 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ऐसा है, हम थोड़ा आगे जारी रखेंगे, समझे। अब मैं इन नियमों को नहीं तोड़ना चाहता हूँ, मैंने इन नियमों को बनाया है, देखिए, और मैं और यहाँ आप ही अपने नियम को तोड़ रहा हूँ। अब इस सर्वोत्तम रचना पर तब ध्यान दें, जब शैतान ने उसे पकड़ लिया, उस भरमाने वाले ने वो दीवार में से होकर अंदर आया और उसने इस सर्वोत्तम रचना को दूषित किया, क्योंकि इसी तरह से उसने ऐसा किया। क्या उसने यह कैसे किया? मैं इसके बारे में और अधिक विस्तार से जाऊंगा। उसने यह कैसे किया? तो यह सर्वोत्तम रचना वचन की दीवार से घिरी हुई थी, परमेश्वर के वचन के द्वारा, और परिवार की सर्वोत्तम रचना स्वयं जो इस वचन के द्वारा किला बंदी की गई थी, लेकिन टूटा वाला भाग जो मूल से टूटकर अलग हो गया था, उस दीवार से पार होकर गया। यह शैतान को इसे दूषित करने का मौका देता है। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैं उन चीजों पर क्या विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन सर्वोत्तम रचना टूट गई थी। लेकिन वो महान मूर्तिकार, जब उसने अपने परिवार सर्वोत्तम रचना के पतन को देखा, उसने इसे ऐसे ही वहीं पर छोड़ना नहीं चाहा था, मुंह नीचे करके और ध्वस्त वह तुरंत ही काम पर निकल पड़ा इसे फिर से बनाने के लिए। वो नहीं चाहता था कि यह नष्ट हो जाए हर समय ऐसा ही वहाँ पड़ी रहे, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो पराजित नहीं होगा। इसलिए वो तुरंत ही काम पर निकल पड़ा और फिर से अपने खुद के स्वरूप में एक मनुष्य को बनाना आरंभ कर दिया। अब हम पाते हैं कि रूढ़िवादी संसार ने साथ ही आकर और पूरी चीज को नष्ट कर दिया, क्योंकि जो वाचाएं बांधी गई थी वे शर्त के रूप से बांधी गई थी, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे या यदि तुम वैसा करोगे। परमेश्वर वो महान मूर्तिकार, उसने देखा कि मनुष्य वाचा को बनाए नहीं रख सकता, वो बस नहीं कर सकता है, बस बिल्कुल कोई रास्ता है ही नहीं। कुछ देर पहले इंटरव्यू के दौरान मैं कमरे में एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो अभी यहाँ उपस्थित है। कहा, लेकिन भाई ब्रैनम, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं कि मुझे पता है कि ये गलत है, और वो एक धर्मी छोटी महिला है। मैंने कहा, लेकिन देखो बहन, आप अपनी ओर ना देखें, ये तो बस आपकी इच्छा है और जिसे आप करने की कोशिश करती हैं। और यदि आप सचमुच प्रभु से प्रेम करती हैं, तो पूरे मन से उसकी सेवा करने की कोशिश करें, और तब आपकी सारी गलतियाँ प्रभु यीशु के लहू में छिपी होती हैं। देखा, देखो, उसने मार्ग को बनाया है, तो वो अब आरंभ करता है, मनुष्य को उसकी वाचाओं से लेता है, ऐसा कहते हुए, यदि तुम करोगे तो मैं करूंगा, और वो अब्राहम नामक मनुष्य से आरंभ करता है और अब्राहम को बिना शर्त एक वाचा को देता है। हर समय जब भी वो एक सर्वोत्तम रचना को आरंभ करता, तो शैतान उसे ले लेता, क्योंकि वचन। लेकिन जब उसने अब्राहम के साथ आरंभ किया, तो उसने कहा, मैं इसे कर चुका हूँ। अब यह बिना शर्त के है, ना ही जो कि यदि तुम करोगे तो मैं करूँगा, लेकिन मैं पहले ही इसे कर चुका हूँ। अब परमेश्वर वो मूर्तिकार इस सर्वोत्तम रचना के होने के लिए अटल था। तब अब्राहम में से धर्म प्रधान आए, और धर्म प्रधान वास्तव में अब परमेश्वर क्या कर रहा है, वो इस गिरी हुई सर्वोत्तम रचना को फिर से बना रहा है। इसलिए धर्म प्रधानों में सबसे पहले हम अब्राहम को पाते हैं। अब देखो, हर एक सर्वोत्तम रचना को एक बुनियाद पर रखा गया, एक प्रतिमा, एंजेलों के मूसा का स्मारक संगमरमर के 3 या 4 फुट के टुकड़े पर है, इसकी एक बुनियाद थी। तो परमेश्वर इस सर्वोत्तम रचना को तैयार करने में उसने इसे धर्म प्रधानों की बुनियाद पर रखा, और धर्म प्रधान की बुनियाद पहले अब्राहम था, उसके बाद इसाक, फिर याकूब, फिर यूसुफ, 4 कोने। और अब अब्राहम विश्वास की बुनियाद था। कहा जाए तो इसकी 4 बुनियादें थी। विश्वास की बुनियाद अब्राहम था, प्रेम की बुनियाद इसाक था, अनुग्रह की बुनियाद याकूब था। याकूब के प्रति परमेश्वर का अनुग्रह हर कोई यह जानता है, लेकिन यूसुफ में सिद्धता थी। यही है वो जहां वो स्मारक को स्थापित कर सकता है, ना ही पहली बुनियाद पर, ना दूसरी बुनियाद पर, ना तीसरी बुनियाद पर, लेकिन चौथी बुनियाद पर। अब्राहम ने निश्चित रूप से मसीह को चित्रित किया, उसी तरह से इजाक ने भी किया, प्रेम में। अब्राहम ने विश्वास में किया, इजाक ने प्रेम में किया, याकूब ने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा किया, क्योंकि याकूब का अर्थ धोखेबाज होता है और वो वही था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। लेकिन जब यूसुफ की बात आती है तो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी खरोच, क्योंकि बुनियाद भी अवश्य ही एक सर्वोत्तम रचना होना चाहिए। जब उसने अपने पिता भविष्यवक्ता से कहा, फिरौन से कहो कि तुम्हारे लोग पशुपालक हैं, न कि चरवाहे, क्योंकि एक चरवाहा मिस्त्रियों के लिए घृणित होता है। लेकिन जब बूढ़ा भविष्यवक्ता फिरौन के सामने आया, उसने कहा, तेरे दास गडरिये हैं, तो इसने इसे खरोच को लगाया। देखो, यही कारण है कि यह अभी भी इसे सर्वोत्तम रचना बनाता है। अब बुनियादों को रखा गया है, विश्वास, प्रेम, अनुग्रह और सिद्धता में से होते हुए, धर्म प्रदानों में से होते हुए। अब इस सर्वोत्तम रचना पर आने वाले देह का कार्य भविष्यवक्ता थे, जो कि वचन थे। मुझे आशा है कि आप इसे समझ सकते हैं। देखा, भविष्यवक्ता, न ही वे नियम, भविष्यवक्ता, क्योंकि भविष्यवक्ता प्रमाणित वचन थे जो देह को बनाते हैं, न ही धर्म प्रधान भविष्यवक्ता, वे वचन थे। अंत में जब उसने बहुत पहले मूसा के दिनों में आरंभ किया और भविष्यवक्ताओं में से होते हुए हरेक के पास उतर आया और अंत में देह को बना रहा था, हर समय और नजदीक आते हुए, और उन सब में सबसे बड़ा यूहन्ना था। बाइबल ने ऐसा कहा, यीशु ने इसे कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान महान पुरुष कभी भी स्त्री से नहीं जन्मा, क्योंकि वही वो एक था जो वचन का परिचय दे सकता था। और फिर अंत में महान सिर, इन सब का सिर आया, बाकी देह ने बस इसके बारे में बात की। बुनियाद धर्म प्रधान के द्वारा रखी गई थी, लेकिन देह उस वचन के द्वारा बनाई गई थी जो भविष्यवक्ता थे, और यहाँ पर इन सब का सिर आता है, यीशु दृश्य पर आया। वहाँ जब ये सिर का हिस्सा उस पर रखा गया था, तो हम उसमें परमेश्वर के पूरे हाथ के काम को देखते हैं। हम उसमें वचन के सिद्ध प्रतिबिंब को पाते हैं, क्योंकि वो वचन था, वचन की परिपूर्णता। अब फिर से परमेश्वर के पास फिर से सिद्ध सर्वोत्तम रचना है, जैसा कि यशाया ने कहा, देखो मेरे दास, मेरी सर्वोत्तम रचना, जो इस एक सिद्ध के आने के लिए मैंने सारे युगों में से होते हुए चित्रित किया है, और यहाँ यह ठीक मेरे सामने खड़ा है, एक सिद्ध, वहाँ उसके अपने खुद के स्वरूप में परमेश्वर को प्रतिबिंबित करते हुए, क्योंकि उसने कहा संत योना 14 में, जब तुम मुझे देखते हो तो तुम पिता को देखते हो। और तब आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन को काट कर निकाला गया, और यह प्रतिबिंबित किया कि वचन आरंभ में क्या था। वो वचन उसकी अपनी ही समानता में सर्वोत्तम रचना में प्रतिबिंबित हुआ। परमेश्वर वापस फिर से अपनी समानता में आया, वचन रूप जो एक मनुष्य के स्वरूप में प्रतिबिंब हुआ, सर्वोत्तम रचना। सभी भविष्यवक्ता के पास दोष थे, वे सारे एक हिस्सा थे, लेकिन यहाँ अंत में उसमें से होकर अंत में वो सर्वोत्तम रचना आगे आती है, वो जो एक सिद्ध है, उसमें बिल्कुल कोई दोष नहीं है। स्वयं बनाने वाले का इतना सिद्ध प्रतिबिंब उसकी अपनी खुद की छवि उसके कार्य में प्रतिबिंब हुई। परमेश्वर और मसीह एक थे, इस हद तक यहाँ तक कि उसने अपनी खुद की आत्मा उसमें डाल दी और उसके बाद यहाँ तक वो प्रतिमा और बनाने वाला एक हो गए थे। परमेश्वर और उसके मूर्तिकार का काम उसकी सर्वोत्तम रचना जहाँ मूसा था, संत एंजिलो के काम में एक, या मेरा मतलब माइकल एंजिलो के, जो एक मूर्तिकार का काम जो कि मरा हुआ था क्योंकि इसे पत्थर में से बनाया गया था। लेकिन यहाँ प्रधान बनाने वाले ने जब उसने अपनी हस्तकला को सिद्ध किया, उसने इसके अंदर कदम रखा, इतना सिद्ध था, एक मनुष्य का छुड़ाने वाला, इतना सिद्ध, इतना ईश्वरीय, फिर भी उसमें कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसकी इच्छा रखते। जब जीवित परमेश्वर का यह कुआरी से जन्मा पुत्र इतना सिद्ध बना और नम्र और परमेश्वर के स्वरूप में, इतना तक उस महान स्वामी ने भविष्यवक्ताओं में से होते हुए अपने जीवन को लाया और वो सारे भविष्यवक्ताओं का पूर्ण करने वाला था। वो इतना सिद्ध था, इतना तक कि परमेश्वर ने इसे देखते हुए उसने उस पर प्रहार किया और चिल्ला उठा, बोल, जैसा कि माइकल एंजिलो ने किया था, बोल। आप कहते हैं क्या ऐसा है? संत मरकुस 9:7 हम रूपांतर के पर्वत पर पाते हैं, जब वहाँ मूसा खड़ा था, वो नियम, वहाँ एलिया खड़ा था, वे भविष्यवक्ता थे, बहुत पीछे वे धर्म प्रधान, वे पिता, नियम, वे भविष्यवक्ता और सभी वहाँ पर खड़े थे। हमने बादल में से एक आवाज को आते हुए सुना और कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। और यदि वे सुनने जा रहे हैं, तो उसे बोलना ही है। उस पर प्रहार किए जाने के कुछ ही दिन पहले की बात थी, यह मेरा पुत्र है जिसके अंदर मैं रहने से प्रसन्न हूँ, मैंने उसे साचे में ढाला है, मुझे उसे इसमें से लाते हुए 4,000 वर्ष लग गए हैं। और अब वो इतना सिद्ध है, मुझे उस पर प्रहार करना है ताकि वह बोल सके, उसकी सुनो, वो एक सिद्ध है, वो सर्वोत्तम रचना है। याद रखें, उसे पीछे पुराने नियम में से हर समय चित्रित किया गया था। हम उसे पाते हैं, वो जंगल में की चट्टान था जिस पर प्रहार किया गया था। जंगल में की चट्टान, मैं वो चट्टान हूँ जो जंगल में थी, लेकिन वो एक ऐसा पत्थर था जो अब तक अपनी सिद्धता में नहीं आया था, लेकिन नमूने के रूप में इसने कलीसिया को पीछे पीछे लाया ताकि इसमें से बाहर खींचे जिसे वो खींच सकता है, उन्हें जीवन दे जिन्हें वो जीवन दे सकता है। लेकिन वो जंगल में की चट्टान था, वो अभी तक मनुष्य नहीं बना था, वो केवल प्रतिछाया के रूप में था। मूसा ने उसे इस चट्टान पर खड़ा हुआ देखा, उसने उसे वहाँ से जाते हुए देखा और कहा, यह तो एक मनुष्य का पिछला हिस्सा है। आप देखो, मूर्तिकार मूसा को प्रस्तुत कर रही थी जो कि मसीह की एक संभावित छवि था। जब इसे सिद्ध किया गया था तो महान सर्वोत्तम रचना किस तरह से दिखेगी? उसने उसके पास, उसने भीतर डाला, या उसने मूसा के लिए उस दर्शन को व्यक्त किया कि वो सर्वोत्तम रचना कैसी दिखने वाली थी। यह एक मनुष्य का पिछला हिस्सा था जब ये जंगल में से होकर गुजरा। याद रखें, एंजिलो केवल चिल्ला सकता था और प्रतिमा पर प्रहार कर सकता था और कह सकता था, बोल। लेकिन यह उस महान मूर्तिकार परमेश्वर के लिए कितना भिन्न था जब उसने एक मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, इतना सिद्ध कि उसने उसे प्रतिबिंबित किया। परमेश्वर मनुष्य के स्वरूप में से होकर बोला, यह दिखाते हुए कि वो क्या करेगा। वो भविष्यवक्ता के जरिए से होकर बोला क्योंकि वे उनके संभावित स्वरूप में थे, जैसे जैसे वो इसे सिर की ओर ला रहा था। लेकिन जब वो सिर में आया तो वो पूरा परमेश्वर का स्वरूप था, वह खुद को चित्रित कर रहा था। फिर हमारे लिए घात हुआ, अब वो हमारे लिए सर्वोत्तम रचना है, परमेश्वर का उपहार यीशु मसीह, अनंत जीवन। मैं आशा करता हूँ कि हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि हम दिनों को अंधकारमय होते ही देखते हैं, जैसे हम परछाइयों को गिरते हुए देखते हैं, जब मैं भविष्यवाणी करता हूँ, यह बस सूरज के कुछ ही और चक्कर हैं, यह राष्ट्र खत्म हुआ है। क्या आप जानते हैं, कल 4 जुलाई को थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। वो और उनके साथ अन्य बोर्ड के लोग थे और आजादी की घंटी बजी और हमें एक राष्ट्र के रूप में एक स्वतंत्र घोषित किया गया था। इतिहास के अनुसार 200 वर्षों से अधिक समय में कभी भी ऐसा लोकतंत्र नहीं रहा है, और ये 1776 था, 4 जुलाई, और हमारे पास सिर्फ 11 वर्ष बचे हैं। क्या ये कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर सकते। देखो, 11 वर्ष, और यदि ऐसा होता है तो ये सारे इतिहास को तोड़ देगा। और हम समय की स्थिति को देखते हैं, हम लोगों की स्थिति को देखते हैं, हम राजनीति की स्थिति को देखते हैं, हम संसार की स्थिति को देखते हैं। यह खड़ा नहीं रह सकता, इसे टाइटैनिक की तरह डूबना है, इसे अवश्य ही नीचे जाना है, क्योंकि उनके लिए जगह को देना है। एक राष्ट्र दूसरे को जगह देता है जब ये गिरता है, और इस राज्य को अवश्य ही गिरना है, और हर दूसरा राज्य आने वाले राज्य को जगह देना है जो गिर नहीं सकता, क्योंकि हम एक ऐसे राज्य को पाते हैं जो हिलाए नहीं जा सकता, परमेश्वर के इस सिद्ध स्वरूप के जरिए से सर्वोत्तम रचना। परमेश्वर जब उसने उसकी ओर देखा तो वो बहुत ही प्रेरित हुआ, वो बहुत ही उसे देखने के लिए जिस तरह से उसने देखा और उसके उस रूप को देखकर, वो इतना प्रेरित हुआ था जो कि यह एक छुड़ाने वाले की सिद्ध सर्वोत्तम रचना होगी, यीशु छुड़ाने वाला। सो परमेश्वर खुद को प्रहार करने के लिए, क्योंकि अपने स्वयं के दंड का भुगतान करने के लिए परमेश्वर और मसीह एक हो गए, ताकि परमेश्वर की प्रतिमा में प्रहार किया जा सके, वो घायल हो सके। और इसलिए यशाया ने कहा, हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। सिद्ध स्वरूप परमेश्वर मनुष्य, परमेश्वर इन मॉर्फे अलौकिक से दर्शन में बदल गया था, और दर्शन को स्वरूप में सामने रखा गया था, और स्वरूप को मारा गया था जिससे कि अलौकिक मृत्यु के अनुभव का स्वाद ले सके। परमेश्वर की सिद्ध सर्वोत्तम रचना, वो मूसा में ऐसा नहीं कर सका, वो भविष्यवक्ताओं में ऐसा नहीं कर सका। यशाया जिसे आरी से चीरा गया था, इतना तक उसे टुकड़े टुकड़े करके चीरा गया, वो पत्थरवा किए गए भविष्यवक्ताओं में इसे नहीं कर सका, वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वो इसे महसूस नहीं कर सका, ये तो बस उसके एक भाग ही थे। लेकिन इस सर्वोत्तम रचना में वो परमेश्वरत्व के दैहिक रूप की संपूर्णता थी। वह सिर्फ मूसा को व्यक्त नहीं कर सकता था, वो अपने संपूर्ण अस्तित्व को इस व्यक्ति में व्यक्त कर सकता था, और सारी मानव जाति के लिए मृत्यु का स्वाद चख सकता था। परमेश्वर की सिद्ध सर्वोत्तम रचना, परमेश्वर इसे देखकर इतना प्रेरित हुआ, वो सभी युगों का छुड़ाने वाला बन गया था, ताकि उन लोगों के लिए बोले जो पुष्ट भूमि में है, जो पहले रहे थे और अब है। सारी प्रतिज्ञाएं उसी में पूरी हुई, वो सिद्धता की सिद्धता था, सारी प्रतिछायाएं उसमें परिपूर्ण हुई। रूत और बोआज में हमारा कुटुंबी छुड़ाने वाला, सीने पर्वत से हमारा नियम को देने वाला, हमारा भविष्यवक्ता जंगल से, जब वो पहाड़ से आया, जब वो जंगल से आया, जब वो अनंतता से आया और मनुष्य बन गया, वो सिद्ध स्वरूप परमेश्वर वहाँ पीछे युगों में से होते हुए धर्म प्रधानों के द्वारा और उसके मंच को तैयार किया और उन्हें ऊपर ले आया, उन भिन्न भिन्न चीजों में से जिन पर वह इस बुनियाद को रखे, इस पर वो उसके वचन को बनाना आरंभ करता है, वे भविष्यवक्ता। और फिर अंत में सिद्ध भविष्यवक्ता के पास आया, सिद्ध बुनियाद जो परमेश्वर का सिद्ध दर्शन था। Now in order और अब इसे बोलने के लिए वो वचन है, और वचन को बोलने के लिए उसे अवश्य ही स्वरूप में आना है, और फिर स्वरूप को बोलने के लिए इस पर प्रहार करना होगा। वो स्वरूप में आता है और उसके बाद बोलने के लिए वो सिद्ध छुड़ाने वाला। पुराने नियम की सारी प्रतिछाया उसी में पूरी हुई थी, जैसा कि मैंने उस दिन कहा, पुराने नियम का यहोवा नए का यीशु है। जी हाँ, जैसे आप में से बहुत से पुरुष महिलाएं मेरी उम्र के, हमारे पास देश भर में बहुत सारी चीन देश की लॉन्ड्री हुआ करती थी। जब चीनी लोग पहली बार आने लगे तो वे पश्चिमी तट से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आए थे, पूर्वी देश में से आते हुए इस तरह से आगे बढ़ रहे थे, और जब वे आए वे ऐसे लोग थे जो हमारी भाषा और हमारे तरीकों से परिचित नहीं थे, लेकिन वे बहुत बढ़िया कपड़ों को धोने वाले थे, और वे टिकट या रसीद नहीं लिखकर दे सकते थे जिससे कि आप अपने सही धुले कपड़े वापस पा सके। लेकिन चाइना का व्यक्ति, उसके पास उसका छोटा सा कार्डो का एक बंडल होता था जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होता था। तो जब आप कपड़े धुलवाने आते हैं तो वह इस कार्ड को लेकर और एक विशेष तरीके से फाड़ता था, और एक टुकड़ा आपको देता और दूसरा टुकड़ा वो रख लेता। और अब ये हमारे पास अभी जो है उससे थोड़ा बेहतर है, क्योंकि जब आप इसे दावा करने के लिए वापस आते हैं जो आपका अपना है, तो इन दो टुकड़ों को आपस में जुड़ना चाहिए। यदि आप चाहें भी तो आप इसकी नकल नहीं कर सकते, ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। आप पत्रियों की प्रतियां या कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप जो फाड़ा गया है उसकी नकल नहीं कर सकते। इसे दूसरे टुकड़े के साथ बिल्कुल फिट होना है। इसलिए आपके गंदे कपड़े जो आप लाए थे, आप उन्हें इस रसीद से छुड़ा सकते हैं, क्योंकि यह उस रसीद से बराबर मेल खाता था जिसमें से फाड़ा गया था। और जब परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा और नियम के नीचे हमें पाप के लिए दोषी ठहराया, और नियम के पास कोई अनुग्रह नहीं है, यह केवल आपको बताता है कि आप पापी हैं। लेकिन जब यीशु दृश्य पर आया तो वो उसका पूरा होना था, वो उस हर एक चीज का पूरा होना था जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। वो सिद्ध प्रतिज्ञा का वैसा ही स्वरूप था। इसलिए पुराने नियम की सारी प्रतिज्ञाओं को यीशु मसीह में पूरा किया गया था। यह मूसा में पूरी नहीं हो सकी, यह किसी भी भविष्यता में पूरी नहीं हो सकी, लेकिन यह सर्वोत्तम रचना में पूरी हुई थी। यह उन सभी से मेल खाया जो उसने कहा था कि ऐसा होने जा रहा था। वैसे ही कलीसिया को हर उस चीज से मेल खाना होगा जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। यह अवश्य ही वो टुकड़ा होना है जो इसमें प्रहार करने के द्वारा अलग हुआ है। तो यदि मूल वो वचन है, तो वैसे ही इसमें से निकाले गए उसके अपने लोग वचन ही होंगे, ताकि इसके भाग से मेल खाएं। इसलिए चाइना के व्यक्ति, आप दावा कर सकते हैं जहां पर नियम आपको दोषी ठहराता है और कहता है कि आप गंदे थे और आप अपराधी थे और आपको जेल में डाला जा सकता था, लेकिन जब वो आया तो वो इसके साथ जुड़ने वाला टुकड़ा था जो आपको बाहर निकाल सकता है और आपको वापस ला सकता है, ताकि पूरी रसीद बन जाए वो छुटकारा जिसकी परमेश्वर ने पहले अदन की वाटिका में प्रतिज्ञा की थी। तेरा बीज सर्प के सिर को कुचलेगा, लेकिन उसकी एड़ी उसके सिर को कुचलेगी। अब हम इस सर्वोत्तम रचना को पाते हैं जिसे परमेश्वर ने पूरा किया था। अब हम देखते हैं कि वह वो सब था जिसकी ये होने की प्रतिज्ञा की गई थी। वो सारी प्रतिज्ञाएं, वो सारी भविष्यवाणियां, हर एक चीज जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, तेरा बीज सर्प के सिर को कुचलेगा। अब वह उसे नियम के साथ नहीं कुचल सकता और न ही भविष्यवक्ताओं के साथ उसे कुचल सकता, लेकिन उसने इसे किया जब स्त्री का बीज सर्वोत्तम रचना मसीह बन गया। वो वही पत्थर था जिसे दानियल ने पहाड़ में से तराशा हुआ देखा था, वही वो एक था जिस पर प्रहार कर सकता था, वही वो एक था जो कुचल सकता है, सर्प के सिर को कुचल सकता है। उसका जीवन बिल्कुल मूसा के जीवन से मेल खाता था, उसका जीवन दाऊद से मेल खाता था। आओ देखते हैं कि क्या यही था, क्या वो मेल खाने वाला टुकड़ा है। ध्यान दें, दाऊद एक अस्वीकृत राजा अपने ही लोगों के द्वारा, वो एक दिन जब वो उसका अपना पुत्र उसके विरुद्ध विद्रोह करके खड़ा हुआ और उसने अलग किया और इसराइल की सेनाओं को विभाजित कर दिया, और वह दाऊद था जो अपने ही लोगों के द्वारा उसके अपने सिंहासन से खदेड़ दिया गया या निकाल दिया गया, और वहाँ उसके मार्ग में एक मनुष्य था जो उससे घृणा रखता था, और वो वहाँ पर चलकर आता है, दाऊद पर थूकता है। उस पहरेदार ने तलवार खींचकर कहा, मैं उस कुत्ते के सिर को काटकर अलग कर दूंगा, मेरे राजा पर थूका। दाऊद ने कहा, उसे छोड़ दो, परमेश्वर ने उसे ऐसा करने के लिए कहा। क्या आप नहीं देखते, एक दुखी मनुष्य, दुख से उसकी जान पहचान थी। वो एक भेड़ के समान ऊन कतरने वाले के सामने खड़ा होता है मौन। वे उसने ये कहा, शायद दाऊद नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है, लेकिन लगभग 500-600 वर्ष के बाद या थोड़ा अधिक, दाऊद का पुत्र उन्हीं रास्तों में से होकर जा रहा था और उस पर थूका गया। लेकिन ध्यान दें कि क्या हुआ था जब दाऊद उसके अपने, जब वह भगोड़ा बन गया और उसके देश से निकाला गया, जब वह वापस आया तो उस मनुष्य ने शांति और दया के लिए भीख मांगी। यहाँ तक कि जिन लोगों ने उसे मारा, वे भी एक दिन उसे देखेंगे जब वो वापस लौटेगा। और तब हम यूसुफ में पाते हैं कि यूसुफ एक विशेष तरह का लड़का था। वो आखिरी बुनियाद का सबसे शीर्ष भाग, जहाँ पर वो सर्वोत्तम रचना को बनाया जाना था। यह विश्वास से आता है और प्रेम की ओर और अनुग्रह की ओर, यह सिद्धता की ओर बढ़ता है, और इसने ऐसा ही किया। पैरों से आरंभ करके मसीह में आगे सिद्धता की ओर बढ़ा। ध्यान दें कि कैसे उसे यूसुफ में चित्रित किया गया था, जो बुनियाद के शीर्ष पर था, जो उन सभी में सबसे सिद्ध था। हम देखते हैं कि यूसुफ का जन्म उसके परिवार में हुआ था, और वह असल में वैद्य स्त्री के द्वारा जन्मा था, जो याकूब की पत्नी थी। और यह भी ध्यान देना कि जब वो जन्मा तो उसके पिता ने उससे प्रेम किया, और उसके भाई बिना कारण के उससे बैर रखते थे। वे उससे क्यों बैर करते थे? क्योंकि वो वचन था। क्या उसी बुनियाद को देखते हैं? देखा कि बुनियाद का सिरा कैसे आता है? अब देह के सिर की ओर देखो जो आता है। अब दुल्हन के सिर को आते देखो, वो वचन था। और उन्होंने उससे बैर किया क्योंकि वो एक नबी था। उसने चीजों को पहले से देखा और उन्हें बताया, वे घटित हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने कितना विलंब किया, पर ये उसी तरह से घटित हुआ। और आत्मिक होने के कारण उसे उसके भाइयों से बहिष्कृत किया गया था। उन्हें उससे प्रेम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उससे बैर किया क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता था और वो आत्मिक था, और उन्होंने उससे नफरत की। ध्यान दें, उसे चांदी के लगभग 30 टुकड़ों में बेचा गया था, एक खड्डे में फेंक दिया गया, और ये मानते हुए कि मरा हुआ है, लेकिन उसे खड्डे में से निकाला गया था। और उसके परीक्षाओं के समय में, बंदीगृह में, वो पिलाने हारा और पकाने हारा। हम जानते हैं कि पिलाने हारा बच गया था और पकाने हारा नाश हुआ था, और मसीह के बंदीगृह में क्रूस पर एक बचाया गया था और दूसरा नाश हुआ था। दो चोर, दो अपराध करने वाले, और हमने ध्यान दिया कि वो उसके बंदीगृह से निकाला गया था, फिरौन के दाहिने हाथ बैठा, कि कोई फिरौन से बात नहीं कर सकता, केवल यूसुफ के द्वारा ही। और जब यूसुफ ने फिरौन के उस सिंहासन को छोड़ा और सारे मिस्र में तुरही को फूका गया, आवाज आगे आगे गई और कहा, हरेक जन घुटना टिकाओ, यूसुफ आगे आ रहा है। ऐसे ही यीशु के साथ होगा, कैसे उसे पिता के द्वारा प्रेम किया गया था, और बिना किसी कारण के उन सांप्रदायिक भाइयों के द्वारा घृणा की गई। वो चांदी के 30 टुकड़ों में बेच दिया गया था जैसा इसे किया था, और मरा समझकर खड्डे के अंदर डाल दिया गया। क्रूस पर एक नाश हुआ और दूसरा एक बच गया, और क्रूस पर से ऊपर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठता है महामहिम में। वो महान आत्मा जो उसमें प्रतिबिंब हुई थी, और कोई भी मनुष्य परमेश्वर से बात नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही। इस पर सोचें, और जब वो उस सिंहासन को छोड़ता है, आगे बढ़ना आरंभ करता है, तुरही फूकी जाएगी और हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी। याद रखें, वह सफलता का पुत्र था। उसने जो कुछ भी किया वह सफल हुआ, चाहे ये बंदीगृह था या जहाँ भी ये था, वो सीधे बाहर आया। और क्या उसने अपने बच्चों के लिए प्रतिज्ञा नहीं की है कि वो हर एक चीज मिलकर भलाई के लिए काम करेगी, चाहे वो बीमारी हो, बंदीगृह हो, मृत्यु, दुख हो, चाहे ये जो कुछ भी हो, कि यह उनके भलाई के लिए काम करेगा जो उससे प्रेम करते हैं। उसने ये प्रतिज्ञा की है, और ये ऐसा होना ही है, यह वहाँ होना है, यह प्रतीकात्मक है। उसमें से होकर हमसे बात की, वह परमेश्वर का वह सिद्ध स्वरूप था। अब हम यहाँ भी देखते हैं कि जब वो फिर से आता है, याद रखें, यूसुफ ने प्रकाशन के द्वारा, अपनी बड़ी भविष्यवाणी के द्वारा संसार को बचाया। यदि ऐसा यूसुफ के लिए नहीं होता था, तो संसार खत्म हो गया होता, और संसार खत्म हो गया होता यदि ऐसा यीशु के लिए नहीं होता था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। परमेश्वर जीवन को बचाकर रख रहा है। हम आगे और आगे जा सकते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से दाऊद से मेल खाता है, वह मूसा से मेल खाता है, वो एलिया से मेल खाता था, वो यूसुफ से मेल खाता था। हर एक चीज को चित्रित किया गया है, या पुराने नियम में उसके द्वारा पहले से बताया, जो ठीक उसी में मेल खाता है। यह क्या है? यह एक सिद्ध छुड़ाने वाले को दिखा रहा है कि हम अपने पुराने गंदे कपड़ों को लॉन्ड्री या धोने में डाल सके, जाकर इसे फिर से दावा कर सके। इसे मेमने के लहू में धोया गया है। हम दावा कर सकते हैं जो हमारा अपना है, और हर एक चीज जिसके लिए वो मरा, हम उस पर दावा कर सकते हैं। तो वो एक सिद्ध वचन था जिसे चित्रित किया गया था। इससे परमेश्वर उस महान मूर्तिकार को प्रसन्नता हुई कि उस पर प्रहार करे और इसे इस तरह से करे। हम उसे यहाँ यशाया में देखते हैं, जैसे मैंने पढ़ा, हम सब ने उसे ऐसा ही समझा, हमने उससे मुंह फेर लिया। उसकी कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसको चाहते। हर एक जन उसके बारे में बात करता है, उसका मजाक उड़ाता है। मैं अब इस दिन उसके बारे में बात कर रहा हूँ, हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। देखा, हमने उसे ऐसा समझा, हमने उसे देखा। समझ लेने का मतलब उसकी ओर देखना। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो भी उसने ये किस लिए किया? वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, वो हमारे अधर्म के लिए कुचला गया था। अब हम उस पर और आगे जा सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके पास अब वो तस्वीर है कि मेरा अब क्या मतलब है। परमेश्वर उसकी सर्वोत्तम रचना को वापस बना रहा है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आरंभ में जब उसने आदम के बगल में प्रहार किया, तो उसने उसकी बगल से कुछ तो लिया। अब मसीह पर प्रहार करना एक कारण के लिए था कि वो उसमें से निकाल सके उस एक को, एक परिवार होने के लिए दुल्हन, वो उसके लिए एक दुल्हन को ले सके। सो जब उसकी सर्वोत्तम रचना सिद्ध हुई थी, तब उसे इसे प्रहार करना था, उसमें से लेने के लिए, ना ही दूसरा कोई और टुकड़ा, ना ही कोई दूसरी सृष्टि, लेकिन उसी सृष्टि में से। मेरे भाई, इस पर बुरा मत सोचना, लेकिन एक मिनट सोचें, यदि उसने उसमें से लिया, उस मूल सृष्टि से, ताकि उसके लिए दुल्हन को बनाए, तो उसने कभी भी दूसरी सृष्टि नहीं बनाई। उसने मूल सृष्टि के एक भाग को लिया। फिर यदि वो वचन था, तो दुल्हन क्या होनी चाहिए? इसे मूल वचन होना चाहिए, वचन में जीवित परमेश्वर। किम्बरली, दक्षिण अफ्रीका। एक बार मैं हीरो की ओर देख रहा था कि किस तरह से उन्हें जमीन में से बाहर निकाला जाता था, और मैंने उन्हें वहाँ पर रखा हुआ देखा। जब तो उस कारखाने का अधीक्षक, मतलब खदान का, वे प्रार्थना पंक्ति में मेरे संचालकों में से एक थे, और मैंने ध्यान दिया कि हीरे, जिनकी कीमत दसों हजार डॉलर है, एक साथ ढेर में लगे हुए थे, लेकिन वे रोशनी के नीचे भी नहीं चमक रहे थे। और मैंने खदान के अधीक्षक से कहा, मैंने कहा, वे क्यों नहीं चमक रहे हैं? उसने कहा, महोदय, वे अभी तक काटे नहीं गए हैं, उन्हें अवश्य ही काटा जाना होगा। उसके बाद जब उन्हें काटा जाता है तो वे प्रकाश को प्रतिबिंब करते हैं। आप वहीं पर हो। सर्वोत्तम रचना को अवश्य ही काटा जाना है। ध्यान दें, किस बात के लिए काटा जाना है? क्या टुकड़ा काट कर अलग किया जाता है? नहीं नहीं, जो टुकड़ा काट दिया जाता है, ये एक विक्टोरला सुई को बनाता है, और विक्टोरला सुई को एक रिकॉर्ड पर रखा जाता है जो संगीत दुनिया नहीं देख सकती है, लेकिन सुई वो चीज है जो इस संगीत को बाहर लाती है, जो वचन का सच्चा अनुवाद है। उसका जीवन सभी लोगों से मेल खाता था, उस पर प्रहार करके परमेश्वर प्रसन्न हुआ, और अब उसने उस पर क्यों प्रहार किया जिस कारण से उसे आदम पर प्रहार करना था? अब हम उसे घायल, परमेश्वर का मारा कुटा और सताया हुआ देखते हैं। सिद्ध मेमना पापी के लिए घात हुआ, एक सर्वोत्तम रचना। अब लगभग 2000 वर्षों से परमेश्वर फिर से उसे एक सर्वोत्तम रचना बना रहा है, क्योंकि उसने आदम पर प्रहार किया ताकि एक उसके टुकड़े को ले, उसका एक भाग, एक फसली, ताकि उसके लिए एक पत्नी को बनाए। और अब वो सर्वोत्तम रचना जिसे उसने कलवरी पर प्रहार किया, उसने उसका एक टुकड़ा निकाल लिया। यह बस नया नियम है, ऐसा ही है, उसने पुराने नियम को पूरा किया। अब यह नया नियम है, एक और टुकड़ा जिसे पूरा किया जाना है। देखो, नया और पुराना नियम पति और पत्नी है, समझे? और इसने नए को ले लिया, वो पुराना, नए को पहले से दिखाने के लिए मसीह आया, सर्वोत्तम रचना, ताकि उसे पूरा करे। अब उसकी दुल्हन वो सब कुछ पूरा करेगी जो नए नियम में है, एक और सर्वोत्तम रचना बन रही है। जैसे इसने सर्वोत्तम रचना को बनाने में उसे 4000 वर्ष लग गए, अब उसने लगभग 2000 वर्ष एक और सर्वोत्तम रचना को बनाने के लिए लगाए हैं, मसीह के लिए एक दुल्हन, एक और सर्वोत्तम रचना। ऐसा करने में वो इसे अपनी कभी न बदलने वाली विधि से करता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने सर्वोत्तम रचना को बनाया, उसका वचन। इसी तरह से वो अपनी सर्वोत्तम रचना को बनाता है, क्योंकि वो केवल एक सिद्ध सर्वोत्तम रचना तब हो सकता है जब ये सिद्ध वचन होता है। कोई भी गंदगी, कचरा, डाली गई चीजें, ये टूट जाएंगे, लेकिन आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन वो वचन कभी नहीं टूटेगा। आपको याद है, एक हीरे को काटने के लिए आपके पास ऐसा करने के लिए एक सही तरह का औजार होना चाहिए, न कि ऐसा कोई भी टुकड़ा इसे करेगा। मैंने देखा है कि उनमें से टनों टन बहुत ही बड़े टुकड़े पीसकर सीधे इसमें से होकर निकलते हैं, और उन्हें बड़े बड़े टनों के वजनदार इसके ऊपर से जाते हैं, उस हीरे को ठीक इसमें से होकर निकालते हैं। नहीं, ये हीरे को नहीं तोड़ता, इसे काटना होता है। अब वो उसी काम को अपने कभी न बदलने वाली विधि में कर रहा है। हम पाते हैं मलाकी 3 में उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ और मैं नहीं बदलता। वो अपने विधि को नहीं बदल सकता। अब जैसा उसने अब्राहम में आरंभ किया, पहली सर्वोत्तम रचना के गिरने के बाद उसने एक बुनियाद पर अब्राहम में आरंभ किया ताकि एक और सर्वोत्तम रचना को बनाए। उसने पेंटिकॉस्ट के दिन पर आरंभ किया एक और सर्वोत्तम रचना को बनाने के लिए, मूल बीज वचन, पहली कलीसिया में आरंभ किया। ये क्या था? बीज वचन, वचन प्रकट हुआ, वो प्रतिज्ञा जो दी गई थी। योएल ने कहा, ये अंत के दिनों में पूरा होगा, परमेश्वर यो कहता है, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तेरे पुरनीय स्वप्न देखेंगे, तेरे जवान पुरुष दर्शन देखेंगे। वो अंत के दिनों में, दो पिछले 2000 वर्षों में जो करेगा, ध्यान दे और यह मूल के रूप में आरंभ हुआ, जैसा यीशु ने कहा, परमेश्वर का वचन एक बीज है जिसे बोने वाले ने बोया है, और वो बोने वाला था, बीज वचन था। और ध्यान दें, कोई भी बीज जो ऐसे ही बना रहता है वो कभी भी कुछ नहीं करता है, इसे फिर से अपना उत्पादन लाने के लिए जमीन के अंदर जाना होगा। और यह बीज, वो सिद्ध कलीसिया रोम के निसिया में जमीन पर गिरा, या जब वो एक संप्रदाय बन गई। अब इतिहासकार, याद रखना, और आप जो इस टेप को सुनेंगे इसे जांचे और पता करें कि क्या यह सही है कि नहीं। कलीसिया निसिया रोम में मर गई, अब उसने मूल वचन के स्थान पर हट धार्मिकता और मत सिद्धांत को ले लिया। यह क्या था? परमेश्वर ने उस पहली कलीसिया के द्वारा दिखाया था कि वो परमेश्वर था। उसके पास एक सिद्ध कलीसिया थी, लेकिन कलीसिया अन्य सभी बीजों की तरह अवश्य ही जमीन में गिरना और मरना है। अब ये जमीन के अंदर गिरा और मर गया और सड़ गया। आप जानते हैं, मैंने यहाँ बहुत पहले एक किताब को पढ़ा था। किसी ने एक किताब को लिखा और कहा, मौन परमेश्वर। हो सकता है आपने इसे पढ़ा हो, मैं भूल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ ब्रम्बेक, नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे पक्का नहीं है कि इसे किसने लिखा था, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। यह मेरे अपने अध्ययन कक्ष में है। मौन परमेश्वर, कहा परमेश्वर हजारों वर्षों के अंधकार के युगों में से होते हुए मौन बैठा था और कभी हाथ को भी नहीं बढ़ाया, और विश्वास योग्य शहीदों को शेरों के मान में जाते देखा, और रोमी लोगों के द्वारा जला दिए गए, हर प्रकार की हत्या, स्त्रियों ने उनके कपड़े उतार दिए और उनके लंबे बालों में तारकोल लगाकर आग लगा दी और उन्हें जला दिया। याद रखें, छोटे बालों को रखना सबसे पहले रोम में शुरू हुआ, और मसीह स्त्रियों के बाल लंबे थे, सो उन्होंने उसे तारकोल में डुबाया और उन्हें आग लगा दी और उन्हें जला दिया और उन्हें नंगा किया, शेरों को खिलाया। और लेखक ऐसा कहता है, वो परमेश्वर कहाँ है? ओह, कभी कभी मनुष्य का अंधापन होता है। क्या आप नहीं जानते कि उस बीज को मरना था? उसने कभी भी उन्हें छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वे विजय में नीचे चले गए, वे नीचे चले गए, लहू बह रहा था और मर रहे थे, उनके जीवन को दे रहे थे। क्यों? ये एक बीज था, इसे जमीन के अंदर गिरना था, जैसा कि पहले योहन्ना 12 में बताता है, गेहूं के दाने को इसे भूमि के अंदर गिरना होगा और वहां मरना होगा, और न केवल मरना है वरन सड़ना भी है। लेकिन वो संप्रदाय थोड़ा ही जानती थी कि वो जीवन अभी भी उसमें था। हालांकि कलीसिया अपने आप में उस निसिया परिषद में 15 दिनों की लहूलुहान राजनीतिज्ञ वाद विवाद पर, जब वे धनवान वर्ग के लोग आए और इन बड़े उच्च पदाधिकारी व्यक्तियों को कलीसिया के अंदर डालना चाहते थे, और वहाँ उस जंगल में से भविष्यवक्ता जड़ी बूटी खाते हुए और पशुओं की खाल में लपेटे हुए बाहर आए, सच्चे भविष्यवक्ता, और उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया। क्यों? बीज को जमीन के अंदर गिरना है, इसे मरना होगा। ये अंधकार के युगों में वहाँ अंधेरी मिट्टी के नीचे मर गया। उन्होंने सोचा कि ये खत्म हो गया है। आप जानते हैं, संत यूहन्ना 12:24, यीशु ने कहा, जब तक गेहूं का दाना भूमि में नहीं गिरता है वो अकेला ही रहता है। और पहली कलीसिया वो पुनः उत्पादन थी, वो दुल्हन, वो बीज, वो वचन प्रकट बना, जो रोम के निसिया में भूमि के अंदर गिर गया। सुनना कलीसिया, उन सारे राष्ट्र भर में जो इसे सुनेंगे, वहाँ तुम्हारी मिट्टी है, ये वे संप्रदाय हैं, वहाँ है जहाँ वचन को क्रूस पर चढ़ाया गया और उन्होंने मत सिद्धांत को स्वीकार किया, और सैकड़ों और सैकड़ों वर्षों के अंधकार युगों के लिए वचन की सामर्थ और प्रगतिकरण संसार से छिपी हुई थी। केवल कैथोलिकवाद ने शासन किया। जब इतिहास पढ़ते हैं, हम सभी यह जानते हैं, केवल कैथोलिकवाद का शासन। लेकिन आप एक अंकुरित हुए बीज को छुपा नहीं सकते हैं, उसे आगे आना ही होगा, क्योंकि क्यों वो महान मूर्तिकार उसके काम पर है, वह फिर से बनाने जा रहा है। सो वह बीज नीचे चला गया, वो वचन। जब हम संत पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना को देखते हैं, वे सभी जिन्होंने वचन लिखा था और उन्होंने लिखा, जो वचन उन्होंने लिखा वह जीवित बना और जीवित रहा और ये जीवित रहा। और जब हम देखते हैं इसके पकने के बाद यूहन्ना ने पत्रियों में लिखना आरंभ किया, 24 घंटे तक तेल में जलाने के बाद उसे पतमुस के टापू पर फेंक दिया गया। लेकिन वचन को अवश्य ही आगे आना है, इसे लिखा जाना है। वे उसमें से पवित्र आत्मा को तेल से नहीं उबाल सकते थे, इसलिए वो बाहर आ गया। उसका काम खत्म नहीं हुआ था, उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई। पॉलीकार्प जो यूहन्ना का चेला था, वो वचन को आगे लेकर गया और पॉलीकार्प से इरेनियस आया, और इरेनियस परमेश्वर का महान व्यक्ति जो उसी सुसमाचार पर विश्वास करता था जिस पर हम विश्वास करते हैं। वचन परिपक्व है, कलीसिया इसे निचोड़कर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। अंत में यह निसिया रोम में आया और वहाँ भूमि के अंदर गिरा संत मार्टिन के बाद, और उसकी हत्या कर दी गई थी। संत मार्टिन ने उसी बात का विश्वास किया जो हम विश्वास करते हैं। वो उसी बात पर खड़ा था, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर, यीशु के नाम में पानी में बपतिस्मा, वो उसी बात में खड़ा था जिस पर हम खड़े होते हैं। और वो एक भविष्यवक्ता था और परमेश्वर के पूरे वचन पर विश्वास किया। और अंत में वे क्रूस पर चढ़ाए गए थे और उन्हें जमीन के अंदर मसला गया और सैकड़ों वर्ष तक वहीं पड़े हुए थे, जब तक बीज या बाहर से सड़ नहीं जाता। पुराने शरीर सड़ चुके थे। मैं संत एंजिलों में रहा हूँ, कब्रों के तहखाने में गया हूँ और देखा है कि वे कहाँ पर मरे, और उनकी टूटी हुई हड्डियाँ और हर एक चीज थी, वे अंत में सड़ गए। इतना तक उनकी हड्डियाँ भी जा चुकी थी, लेकिन जीवन अभी भी वहीं पर था। गेहूं का दाना जो जमीन के अंदर चला गया, निसिया परिषद में ये मार्टिन लूथर में फिर से अंकुरित होना आरंभ होता है, जैसे कोई भी दाना ऊपर आता है या गेहूं बीज के सड़ने के बाद जीवन आगे बढ़ने लगता है। और यह मार्टिन लूथर में आगे आना आरंभ होता है, पहली चीज उसने क्या किया, कैथोलिकवाद के संप्रदाय को अस्वीकार करता है, विरोध किया कि यह गलत था, क्योंकि उसने कहा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये क्या था, जरा सा एक कमजोर जीवन जिसने कुछ छोटी सी टहनी को ऊपर लाया। ये लूथर थे, यह निश्चित रूप से जमीन के अंदर गए हुए दाने के जैसा नहीं दिखता है, लेकिन जीवन अब बाहर आ रहा है। फिर यह आगे एक डंठल पर चला गया। फिर क्या हुआ, जॉन वेस्ली के दिनों में उसने क्या किया, जब उसने पवित्रीकरण को बाहर लाया, वो वचन के साथ बना रहा। और इसने क्या किया, लूथरन एक संगठन हो गए थे और एक संगठन को बनाया, इसलिए कुछ तो घटित होने का समय आ गया था। अब सर्वोत्तम रचना को बनाया जा रहा है। उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने उस एंग्लिकन कलीसिया का विरोध किया, सुधार में एक लटकन या फूंदनी की नाई बाहर आया। ये क्या है, बीज जीवन में आ रहा है, अब बढ़ रहा है। अब डंठल न तो बीज जैसा दिखता है, न ही लटकन या फूंदनी। अब पेंटिकॉस्टल भाइयों, सारे राष्ट्र भर में मैं चाहता हूँ कि आप सुनो मेरे भाई, यदि यह आखिरी संदेश होता है जिसका मैं कभी प्रचार करूँगा, तो ये मेरी सर्वोत्तम रचना है। क्या आपने ध्यान दिया कि जब गेहूं का दाना जो भूमि में गिरता है, जब ये वापस उसके दाने में फिर से बनना आरंभ करता है। प्रकृति को देखो, प्रकृति वास्तव में परमेश्वर है, परमेश्वर प्रकृति में कार्य करता है, ये ही सब वो कर सकता है। लेकिन पेंटिकॉस्टल की बेदारी से, जैसा कि वे सोचते हैं बीज था, ये ऐसा नहीं था। अब देखो, लेकिन बीज की तरह ही कुछ तो बाहर आता है। अब देखें कि यीशु ने संत मत्ती 24:24 में क्या कहा, कि अंत के दिनों में दोनों आत्माएं इतनी नजदीक होंगी कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा दे। अब वो डंठल बीज के जैसा जरा भी नहीं दिखता, न ही फूंदनी बीज की तरह दिखती है। लेकिन अभी ध्यान दे, न ही लूथर के दिनों में, लेकिन अंतिम दिन में। पहली चीज, यहाँ पर गेहूं के किसान बैठे हुए हैं, गेहूं के बीज पर जो पहली चीज जो निकलती है, आप लगभग सोचेंगे कि यह एक बीज है, लेकिन यह क्या है? यह भूसी है। यह एक छोटी सी बाहरी चीज को बनाता है, जैसे ताकि बीज को पकड़ कर रखे। यह एक भूसी को तैयार करता है, लेकिन भूसी बीज नहीं है। ये लटकन या डंठल से अधिक कुछ और नहीं। तब यह केवल जीवन को आगे ले जाने वाले हैं, उस गेहूं के दाने को। संत यूहन्ना 12, आप देखते हैं यीशु बोल रहा है, गेहूं लटकन या फूंदनी के बाद, वेस्ली के बाद भूसी को आगे लाता है, जो किसी भी और चीज से दाने की तरह कुछ अधिक दिखाई देता है। भूसी अधिकतर दाने की तरह होती है, या हर समय दाने की तरह अधिक होते जा रहा है, वो एक जो जमीन के अंदर गया था। और जब यह आगे आता है, डंठल, इसमें जीवन होता है, लेकिन यह निश्चित है कि यह दाना नहीं है। लटकन आगे आती है, वो पराग, यह अभी भी दाना नहीं है, और उसके बाद यह भूसी को आगे लाता है, और ये बस गेहूं के आकार का ही होता है, बिल्कुल गेहूं के दाने के जैसा। लेकिन फिर भी ये गेहूं नहीं है, बिल्कुल उसी आकार में होता है, पूरी तरह से। पेंटिकॉस्टल बिल्कुल वैसे ही बाहर आए जैसे गेहूं आता है। हर एक चीज दूसरे में से बाहर आती है, दूसरे में से बाहर आती है, लेकिन वे केवल एक आगे ले जाने वाले हैं, वे संप्रदाय में चले जाते हैं। और यही है जो पेंटिकॉस्ट ने किया, संप्रदाय में चले गए। और पेंटिकॉस्ट ने क्या किया जब वह बिल्कुल दाने की तरह बाहर आया? ये सीधे वापस चले गए, जैसे प्रकाशित वाक्य 17 में, साथी संप्रदाय में से एक में। यह बिल्कुल ऐसा है, यही है जो यीशु ने कहा। अब देखो, सुसमाचार लूथर के जरिए से बाहर आया, वेस्ली के जरिए से पेंटिकॉस्ट के अंदर आता है, और अंतिम दिनों में यदि संभव हुआ तो यह बिल्कुल चुने हुए लोगों को भी भरमा देगा। वे चुने हुए। ओ पेंटिकॉस्टल भाइयों, क्या आप नहीं देख सकते? गेहूं अपनी पहली शुरुआत में बस बीज की तरह ही होता है, जब ये बीज की तरह तैयार होने लगता है, लेकिन ये भूसी होता है। ये संप्रदाय हुआ है, ठीक उसी चीज को किया, वही चीज जैसा उन्होंने यहाँ लूथर में किया था। प्रकाशित वाक्य 17 में ये कलीसियाओं के विषय, ये उसी चीज को साबित करता है। अब बीज का दाना मूल रूप से नीसिया में गिरा, क्योंकि यह पहली संप्रदाय थी। यहाँ ध्यान दें, जो जीवन डंठल लटकन में था, ये सब अब बीज में आकर समाप्त होता है। मूल बीज से जो जीवन बाहर आता है, वह विभिन्न प्रक्रियाओं में से होकर ऊपर आता है, तीन अलग अलग प्रक्रियाओं में से, और फिर घूमकर अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है। हालेलुया। ओ प्रभु, मैं दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इसे दिखाया है। देखो कि वचन और ये प्रकृति एक साथ कैसे सिद्ध कार्य करते हैं, बिल्कुल जैसे हम पुनरुत्थान को साबित करते हैं। उदय होना, सूर्य का डूबना, फिर से उदय होना, पत्ती पेड़ से बाहर निकल रही है, जीवन का रस जड़ के अंदर नीचे की ओर जाता है और वापस ऊपर आता है, और पत्ता उसके साथ फिर से वापस आ जाता है, यह जमीन पर गिरता है, पेड़ का जीवन उसे ठीक वापस चूस लेता है, कैल्शियम और पोटाश, और इसे सीधे फिर से दूसरे या नए पत्ते पर लाता है। देखिए, सारी प्रकृति, हर एक चीज ठीक परमेश्वर के वचन के साथ काम करती है, और यहाँ है ये बिल्कुल सिद्ध रूप से इन कलीसिया के युगों में। यही कारण है कि पवित्र आत्मा नीचे उतर आया और इन चीजों को खींच लिया, और जैसा उसके पास है वैसा ही उन्हें हमारे लिए बनाया। ठीक यही है। ध्यान दें, यहाँ वो जीवन जो भूसी में था, वो डंठल में और लटकन में, भूसी में, ये सब बीज में एकत्र होता है। और जो जीवन डंठल में था निकल गया, वो एक उस दूसरे को बनाने के लिए निकल गया। धर्मीकरण ने पवित्रीकरण के लिए एक रास्ता बनाया, पवित्रीकरण ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए एक रास्ता बनाया, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा ने स्वयं पवित्र आत्मा के लिए रास्ता बनाया, ताकि सीधा आगे सिद्धता में आए, फिर से वचन पर वापस आए, ताकि स्वयं को प्रकट करे। लेकिन जो संप्रदाय हो गया, मर जाता है। जैसे जीवन लूथर में था, वेस्ली को बनाने के लिए चला गया और वेस्ली से ये पेंटिकॉस के लिए चला गया और पेंटिकॉस से मूल बीज को बनाने के लिए पेंटिकॉस के लिए जो उस समय वेस्ली में से बाहर आता है, उस समय तक वेस्ली में से पेंटिकॉस के बाहर आने का कारण क्योंकि यह कोई संप्रदाय नहीं था, पेंटिकॉस बाहर निकला था। उसके बाद पेंटिकॉस संप्रदाय के अंदर चला गया और उसने क्या किया, यह भूसी में बदल गया, यह असली चीज की तरह दिख रहा था। और कोई भी कितनों ने कभी बीज को देखा है, गेहूं का एक बीज जब बढ़ने लगता है पहली छोटी सी चीज क्या है, यह बिल्कुल बीज की तरह होती है लेकिन यह भूसी है। तीन चरणों को देखा, डंठल, लटकन या पराग, उसके बाद भूसी और फिर भूसी में से मूल बीज बाहर आता है। देखा, ना ही बीज, यह तो बीज का जीवन था, इसमें से होकर विकसित हो रहा था बीज में आने के लिए। आमीन आमीन। आप इसे देख रहे हैं, ये क्या है, एक पुनरुत्थान, एक सर्वोत्तम रचना पर फिर से वापस आ रहा है, जैसे कि वो एक जो अंदर गया था। पेंटिकॉस वेस्ली में से बाहर आया क्योंकि वेस्ली एक संगठन था। पेंटिकॉस बाहर आया ना कि कोई संगठन की नाई, और फिर उस एक में परिवर्तन हो गया। इसे होना था ताकि भूसी को बनाए, उस पर जीवन का सच्चा वचन था, तब इन चरणों में से होते हुए मूल दाना उसके मार्ग पर था, डंठल में से होते हुए फिर पराग में, पराग से भूसी के अंदर और भूसी से इसने बीज को बनाया। नहीं, डंठल, फूंदनी, भूसी, जीवित, उन्होंने उत्पन्न किया उनके प्रारंभिक बेदारी में बीज के जीवन के कुछ भाग को पकड़ कर रखने वाला, लेकिन जब वे संगठित हो गए तो जीवन इसमें से बाहर आगे निकल गया। यह पूरे इतिहास से साबित होता है, किसी भी संगठना ने संगठित होने के बाद कभी कुछ भी नहीं किया, यह मर चुकी थी, यह सही बात है। देखो, जीवन अभी भी आगे यात्रा कर रहा है, यह आगे बढ़ रहा है। ध्यान दे, उन्होंने जो किया है, इन सब ने जो किया है, इतिहास से साबित हुआ है। कलीसिया बिल्कुल ठीक उसी तरह से आई है, उसके लिए फिर से कभी भी उपयोगी नहीं होगी, संगठना की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, एक कलीसिया इसके संगठन होने के बाद इसके मरने के अलावा कुछ नहीं हुआ है, और संगठन मर गई और फिर कभी भी ऊपर नहीं आई। क्या आप इसे नहीं देख सकते? मनुष्य जो अंधे हैं, अपनी आंखें खोलें। प्रकृति और वचन एक साथ संयोजन कर रहे हैं और ठीक यहाँ साबित कर रहे हैं कि यही सत्य है, कि ये सच्चाई है। वो जीवन डंठल को छोड़ देता है जिससे कि लटकन को बनाए, लटकन से यह भूसी को बनाता है और भूसी से यह फिर से मूल के अंदर चला जाता है। ध्यान दे, ये उसके लिए फिर से कभी भी उपयोग का नहीं होगा। यह जीवन कितना ध्यान देने योग्य है, यह पेड़ की तुलना में, गेहूं के दाने में, उसकी यात्रा में अधिक ध्यान देने योग्य है। परमेश्वर ने अपने लोगों को एक पेड़ की तरह बुलाया, देखो पेड़ में का जीवन नीचे चला जाता है और फिर से ऊपर आता है, नीचे जाता है और वापस ऊपर आता है। देखो, ये नीचे जाता है और वापस ऊपर आता है, लेकिन गेहूं के दाने में यह मूल डंठल से ऊपर चला जाता है, डंठल, लटकन और भूसी में से होते हुए, और वो चीज जिसमें से होकर गुजरा वो मर जाती है, इसलिए वो फिर से इसमें से होते हुए वापस नहीं आ सकती है। ये क्या है, इसका अब कोई उपयोग नहीं है, यह उसकी सिद्धता की ओर आगे बढ़ता है। आमीन। क्या आप नहीं देखते कि उसने कभी भी किसी संगठन का उपयोग क्यों नहीं किया? वो फिर से इसमें वापस नहीं आ सकता, यह मर चुकी है, लेकिन वो जीवन एक से दूसरे में से होकर आगे जाता है। देखिए, ये मत सिद्धांत को रखते हैं और इसमें डालते हैं, जो कोई एक शब्द को जोड़े या एक शब्द को निकाले, देखो वो इसमें से रोक दिया है। इसे अवश्य ही आगे यात्रा करने वाला जीवन बीज होना है। मैं इसे अब एक दृष्टांत में उपयोग कर रहा हूँ, दुल्हन का, जो सर्वोत्तम रचना आगे आ रही है। जब सर्वोत्तम रचना गिरी, वहाँ एक सर्वोत्तम रचना ऊपर उठ रही है। सर्वोत्तम रचना गिरी निसिया में, रोम, निसिया में, निसिया, रोम के बाद वो एक प्रक्रिया में से होकर आई, लेकिन वो फिर से उस सर्वोत्तम रचना पर वापस आ रही है। सिद्ध होकर, क्योंकि वो उस वचन का एक भाग है जो उसके द्वारा बोला गया था। उसके पास बिना दाग या एक बिना झुर्री की कलीसिया होगी, या किसी भी तरह के संगठन या संप्रदाय से जुड़ी हुई नहीं होगी। उस शापित चीज से या उन चीजों से होकर गुजरी है, लेकिन यह कभी भी वहाँ नहीं होगी। ध्यान दें, बीज ऊपर आ रहा है, वो जीवन ऊपर आ रहा है, न ही वापस पीछे जा रहा है। इसके बाद कोई और पुनरुत्थान नहीं होगा। जीवन ऊपर आ रहा है, उसके सिद्धता की ओर जाने के लिए एक पुनरुत्थान। ध्यान दें, भूसी ने बाहर लाया, उस ध्यान दें, भूसी मूल बीज को अपने में से बाहर लाती है। प्रकाशित वाक्य के तीसरे अध्याय में हम इसे पाते हैं। अब याद रखें, बाइबल में सात कलीसिया के युगों में से किसी अन्य कलीसिया से उसे बाहर नहीं किया गया था। कितने लोगों को ये याद है, वह कुछ और बनाने के लिए कलीसिया युगों में से होकर आगे गया, लेकिन यही है, वहाँ कुछ भी और नहीं है, लेकिन वो मूर्तिकार ने फिर से सिद्धता को वापस पा लिया है, वो वचन। देखा, पीछे मत जाओ, ये कितना अलग है। जी हाँ, ओह। और तब ध्यान दें, जब भूसी आगे आती है तो बिल्कुल दाने की तरह ही दिखती है, लेकिन जब दाने का जीवन भूसी को छोड़ने लगता है ताकि उसमें जाकर दाने दुल्हन को बनाए, भूसी खुल जाती है और दाने को बाहर निकाल देती है। क्या यह सही है? प्रकृति ठीक यही है जो उसने किया। प्रकाशित वाक्य 3 में हम पाते हैं कि लौतिया कलीसिया युग ने उसे बाहर कर दिया। अब देखिए, ऐसा नहीं हुआ, पहले के अन्य युगों में से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अभी कुछ और भी बनना बाकी था। ये तो बस वहाँ से होकर गया और दूसरे के अंदर चलता गया। मैंने प्रारंभ से आपको बताया है, अब कोई और संप्रदाय नहीं आ रही है, हम अंत में हैं, और उन्होंने उसे बाहर कर दिया है, क्योंकि क्यों? वो फिर से वचन है, वो उस एक के समान है जो वहाँ गिर गया, वो वही सिद्धांत है जो आरंभ से आगे आया। और जब बीज वचन आगे बढ़ना आरंभ होता है तो भूसी इसे अपने आप में से आगे रखती है, जीवन अन्य सभी को छोड़ देता है उसके पीछे जाने के लिए। यही वो सच्चे विश्वासी हैं। जीवन जहाँ भी जाता है वे जीवन के पीछे पीछे जाते हैं, जैसे इसराइल में जो एक सिद्ध नमूना है। यदि हमारे पास समय होता, मेरे पास बस कुछ ही मिनट बचे हैं, लेकिन एक सिद्ध नमूने में आरंभ में जहाँ भी अग्नि का खंभा गया वो जीवन था, परमेश्वर वो प्रकाश था। और मैं परवाह नहीं करता कि ये आधी रात थी या चाहे वे अच्छे चुने हुए स्थान पर थे, जब आग का खंभा आगे बढ़ता तो तुरही बज उठती और इसराइल उसके साथ साथ आगे बढ़ता। हालेलुया! और जब तुरही बज उठी तो मार्टिन लूथर उसके साथ आगे बढ़ गया और उसने संगठित कर दिया, मार डाला। उसने खुद नहीं किया, उसके बाद के मनुष्यों ने किया, और फिर परमेश्वर ने उसमें से जीवन लिया, उसे आगे ले आया, उसे कब्र में रख दिया। फिर वेस्ली बाहर आया, उसने उस बड़े संगठन को देखा, सो उसने पवित्रीकरण की एक तुरही को फूका और ज्यादा वचन। देखा, जब उसने किया तो वे आगे बाहर निकल गए, सीधे बाहर, लूथर से बाहर, सीधे मेथोडिस्ट में। और जब पेंटिकॉस्ट ने इसे देखा तो उन्होंने एक तुरही को फूका, यह दानों के लौटाने का समय है। देखा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरही को फूका और वे बाहर आ गए, फिर वे संगठन हो गए। लेकिन याद रखना, भूसी के बाद ये 3 चरण हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, वहाँ दाने के अलावा और कुछ नहीं बचा है, हे परमेश्वर। और उसके बाद उस सब में से दाना बाहर निकलता है। आमीन और आमीन। बीज वचन स्वयं में बनने लगते हैं, जीवन उसी से बाहर आने लगता है। अब ध्यान दें, यदि दूल्हा शुरुआत पहले दूल्हा ये दुल्हन है जो आगे आ रही है। याद रखें, कलीसिया पेंटिकॉस्ट से आरंभ होती है और ये निसिया में गिरती है। ये अंकुरित हुई, ना ही वास्तविक दाने की तरह, नहीं, यह वहाँ उस जीवन में का कुछ ही था, लेकिन यह एक संगठन को बनाने के लिए अंकुरित हुआ और उसने उस संगठन में से होते हुए खींच लिया। और फिर इसने क्या किया, फिर ये चला गया उस संगठन से, ये एक और संगठन के अंदर चला गया, वचन के एक और चरण के अंदर चला गया, धर्मीकरण, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, समझे। और जब यह इस डंठल और प्रक्रिया में से होकर गुजरा, यह आगे और अधिक आता रहा। याद रखें, छोटा सा पराग अधिक होता है, लटकन डंठल की तुलना में बीज की तरह अधिक होता है, और भूसी लटकन की तुलना में बीज की तरह अधिक दिखती है, लेकिन बीज स्वयं उससे और आगे है। देखा, इसे बस ढोने के लिए उपयोग किया गया ताकि खुद को आगे ले जाए। ध्यान दे दुल्हन, यदि दुल्हन आदि में वचन था, मेरा मतलब दूल्हा, और फिर यदि दुल्हन को दूल्हे में से लिया गया है तो इसे अवश्य ही वचन होना है। ध्यान दे, दुल्हन को होना ही है। क्यों? क्यों दूल्हे को अवश्य ही प्रकट हुआ वचन स्पष्ट किया हुआ होना है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दूल्हा और दुल्हन एक हैं। दुल्हन तो उसका केवल एक प्रहार करके निकाला हुआ टुकड़ा है। वहाँ सर्वोत्तम रचना है, इसे प्रहार किया गया था। कहें, माइकल एंजेलो फिर से इसे पुनः उत्पन्न नहीं कर सका, वो इसे वापस नहीं रख सका, लेकिन परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। वो इस छोटी सी दुल्हन को लाने जा रहा है जिसे प्रहार किया गया है, सीधे वापस मूल वचन के बगल पर, और वहाँ है वो, वहाँ वो सर्वोत्तम रचना है, अदन की वाटिका में वापस फिर से परिवार है। यह दुल्हन ऐसा किस तरह से करेगी? यह गेहूं इसे कैसे करने जा रहा है? मलाकी चार ने कहा, अंत के दिनों में इसे फिर से लौटाया जाएगा। क्या? शुरुआत की तरह वापस लौटाया जाएगा, इसे वापस ले लेगा। मैं वापस लौटाऊंगा, प्रभु यूं कहता है। इन सभी वर्षों में गाजाम टिड्डी और अरबे टिड्डी और इन दूसरी चीजों ने खा लिया है, मैं फिर से लौटाऊंगा। मलाकी चार ने कहा, वो लोगों के हृदय को लौटाएगा और लोगों का विश्वास वापस फिर से मूल पिता की ओर फेरेगा। देखा, हम इसे ठीक हमारे सामने देखते हैं। कलीसिया, हम कहाँ पर हैं? अब कुछ ही मिनटों में बंद करते हुए मैं चाहता हूँ कि आप अभी अभी घटित हुई किसी बात को नजदीक से देखें। मलाकी चार को वापस लाना है, मूल में वापस लाना है। उसे कलीसिया से, कलीसिया के शरीर से प्रहार किया गया है, उसी उद्देश्य के लिए उसके स्वामी के साथ प्रहार किया गया है। वो वचन है, ठीक वैसे ही जैसे यूसुफ को अपने भाइयों से मारा गया था क्योंकि वो वचन था, और यीशु अपने भाइयों से मारा गया क्योंकि वो वचन था। कलीसिया को मारा गया है, दुल्हन को कलीसिया से मारा गया है क्योंकि वो वचन है। वहाँ फिर से आपके चरण हैं, 1, 2, 3, देखो बिल्कुल ठीक वैसे ही। वचन जीवित और कार्य में है। बाइबल दुल्हन, ना ही कोई मनुष्य की बनाई दुल्हन, बाइबल की दुल्हन, परमेश्वर की मार खाई हुई और पीड़ित। कोई सुंदरता नहीं, हम उसकी इच्छा रखते, लेकिन फिर भी परमेश्वर का मारा कुटा और दूरदर्शा में पड़ा हुआ समझा, यह सही है। वह अकेली खड़ी रहती है। प्रकाशित वाक्य 3 के अनुसार वो सभी संप्रदायों से मार खाई हुई थी। वह उस लौतकिया कलीसिया युग से मार खाई हुई है जिसमें वो पली बड़ी थी, समझे? यह कलीसिया इस लौतकिया कलीसिया युग में पली बड़ी थी, यही वो भूसी है। लेकिन यदि वे दूसरे, क्या आप पेंटिकॉस्टल लोग नहीं देख सकते हैं? क्या ये दूसरे भूसी थे और मर गए? यदि उस दूसरे डंठल को मरना था, यदि लटकन को मरना था, वैसे ही भूसी को अवश्य ही मरना है। संगठनाओं के 3 चरण, और याद रखना, आपने कहा तो ठीक है, अब वहाँ बहुत सी लटकन लटक रही थी, वहाँ बहुत सी यह है, जी हाँ, वह मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, चर्च ऑफ क्राइस्ट थे। ये सब छोटी छोटी चीजें जो उस पर से गिरी थी, पत्तियाँ और बाकी की सारी चीजें उस पर लटकी हुई थी, लेकिन मूल वे सुधारक थे। अब देखना, दूल्हे की तरह वो अकेली खड़ी है, लोगों के द्वारा ठुकराई हुई, तिरस्कृत और कलीसियाओं से ठुकराई गई, दुल्हन उसी तरह से खड़ी रहती है। यह क्या है? यह उसकी सर्वोत्तम रचना है। देखिए, यह वो वचन है जिसमें से होकर वो कार्य कर सकता है, प्रकट बना सकता है, ठुकराई जाती है। तो डंठल, लटकन और भूसी कभी भी बीज नहीं बनते, नहीं, लेकिन हमेशा और अधिक बीज की तरह बनते जाते हैं। अब कटनी के समय बीज अपने मूल जीवन में वापस आ गया है, वापस बाइबल की ओर। मलाकी चार ने कहा कि इसे इस तरह से लाया जाएगा। ओह ओह प्रभु, सब होना ही है। ऐसा होने के लिए इसमें संपूर्ण वचन होना चाहिए, क्या यह सही है? अब उसने क्या कहा? प्रकाशित वाक्य 10 में जो बात जगह लेगी, क्यों टूसॉन की यात्रा की गई थी कलीसिया को चालू करने के लिए, संदेश वाहक के दिनों में सातवें दूत के सातवें दूत का संदेश परमेश्वर का पूरा वचन प्रकट किया जाएगा। मोहर जो कुछ सारा डंठल ने छोड़ा है क्यों और इसके बारे में सब कुछ इस समय में प्रकट किया जाएगा। क्या वचन ने ऐसा ही कहा है? फिर हम इसे देखते हैं। फिर हम कहाँ पर हैं? देखा हम कहाँ हैं? वहाँ केवल एक ही चीज है, कटनी यहाँ पर है, वो पूरी तरह पकी हुई है, वह अब आगमन के लिए तैयार है। ध्यान दें, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। कटनी के समय बीज अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है और बीज होने के लिए उसके पास अवश्य ही सारा वचन होना चाहिए। अब आपके पास आधा बीज नहीं हो सकता, यह ऊपर नहीं आएगा, समझे? इसे पूरा बीज होना है, यह प्रकट नहीं होगा। कहते हैं मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में विश्वास करता हूँ, हालेलुया, मैं अन्य जुबान बोलने में विश्वास करता हूँ, यह बस बीज का एक भाग है, लेकिन अब इसमें जोड़ा गया है। हालेलुया, देखा जीवन, न ही वे दान वरदान, दान वरदानों का जीवन, देखा देखा मेरा क्या मतलब है? हम अंत समय पर है भाइयों, डंठल लटकन भूसी अब मर चुकी है और सूख गई है। इसके लिए केवल एक ही बात होनी है, उसे जलाने के लिए विश्व कलीसिया परिषद में इकट्ठा होना है। वचन देदारी हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे उसने लूका 17, मलाकी 4 और सभी में प्रतिज्ञा की थी। देखिए यह सही है, प्रकाशित वाक्य में सारा सच्चा जीवन जो डंठल लटकन और भूसी में था अब बीज में इकट्ठा हो रहा है, पुनरुत्थान के लिए तैयार, कटने के लिए तैयार। अल्फा ओमेगा बन गया है, आमीन। पहला अंतिम में आता है और अंतिम पहला है। जो बीज जमीन के अंदर गया वो एक प्रक्रिया में से होकर आया है और फिर से बीज बन गया है। वो बीज जो अदन की वाटिका में गिरा और वहाँ मर गया, वापस आ गया उस असिद्ध बीज से जो वहाँ पर मर गया, सिद्ध बीज के पास वापस आ गया, वो दूसरा आदम। पहली हवा जो मर गई और दूसरे सुधारक में उपयोग किया गया, दूसरे आगमन में जैसे एक बालक को आगे लाते हुए, अब फिर से सच्ची दुल्हन, वो बीज बन चुका है, सीधे फिर से वापस मूल वचन के साथ। अल्फा और ओमेगा एक ही है। उसने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, उसने बीच में कभी कुछ भी नहीं कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और अंतिम। जी हाँ श्रीमान, पहली सेवकाई और आखिरी सेवकाई एक ही है, पहला संदेश और दूसरा अंतिम संदेश एक ही बात है। मैं हूँ, मैं अल्फा में था, मैं ओमेगा में हूँ। एक दिन ऐसा होगा जिसे न दिन कहा जाएगा और न ही रात, लेकिन संध्या के समय उजियाला होगा। देखो अल्फा और ओमेगा, यह पहला और अंतिम बन गया है। ओ मेरे भाइयों, हम उस पर घंटों बने रह सकते हैं। एक परिवार की महान सर्वोत्तम रचना, दूसरा आदम और दूसरी हवा, अब वाटिका के लिए तैयार, सहशताब्दी, आमीन, वापस धरती पर, हालेलुया। उस महान मूर्तिकार ने उन्हें वहाँ पर रखकर ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, उसने समय को लिया, जैसा कि उसने लाखों वर्षों में से होते हुए किया। उस पहले सिद्ध जोड़े को सांचे में ढाल रहा था और वे गिर गए, अब हजारों वर्ष हो गए हैं, उसने फिर से सांचे में ढाला है और अब यहाँ पर वे तैयार हैं। सर्वोत्तम रचना आई और उस पर प्रहार किया गया था, उसकी बगल से सहायक बाहर आई और उसे उसी प्रक्रिया में से होकर ऊपर लाया गया है। अब यहाँ वह फिर से वापस आ गई है, सारे उसी सभाव के साथ, बाइबल और अन्य हर एक चीज के साथ दिखाते हुए हम यहाँ हैं। Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the Bible foretold. Gentile days numbered. Look at this bunch of trash we got. We're harls and cumbers. Return or disperse to your own. यह सही है, बेहतर होगा कि आप वहाँ जल्दी से आ जाएं यदि आप जा रहे हैं। मैं लगभग 5-10 मिनट में बंद करने जा रहा हूँ। परिवार की महान सर्वोत्तम रचना पर ध्यान दें। पति और पत्नी वास्तव में एक परिवार नहीं हो सकते जब तक कि वे एक न हो। उन्हें एक होना होगा, यदि वे नहीं हैं, तो वे एक अच्छा परिवार नहीं है। पत्नी एक ओर खींचती है और पति दूसरी ओर, यह एक बहुत ही भयंकर परिवार को बनाएगा, लेकिन करारनामे में एक दूसरे से प्रेम के साथ होते हैं, यही एक परिवार होता है। और अब यह परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना था और अब यहाँ पर सारा सच्चा परिवार उसे चित्रित करता है, देखा। और अब सर्वोत्तम रचना परिवार फिर से वापस आ गया है, मसीह और उसकी दुल्हन आने के लिए तैयार, दूसरा आदम, दूसरी हवा अब उनके घर वापस लौटने के लिए तैयार हैं, और पूरी तस्वीर छुटकारे की है, जहाँ से ये था उसे वापस ला रहा है, देखो बिल्कुल ठीक ठीक इसे फिर से वापस ला रहा है। उसके बाद एक दिन क्रिश्चियन बिजनेसमैन के यहाँ खड़ा हुआ था, आप में से बहुत लोग मुझे लगता है वहाँ पर थे, जब मैंने सुना कि लूथरन याजक या प्रचारक या जो होना चाहिए वहाँ खड़े होते हैं और वह मूर्खता पूर्वक बात को कहते हैं और उस बात का मजाक उड़ाते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, और उन फुल गॉस्पल बिजनेसमैन के पास वहाँ ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसा कहते हैं, और वो अपने कॉलर को घुमाए हुए होता है, उनमें से बहुत से लोग अब ऐसा करते हैं। और उसने कहा, अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने कॉलर को क्यों घुमाता हूँ, कहा वे भला आपको एक कैथोलिक याजक कैसे कह सकते हैं, कहा कोई अंतर नहीं है और नहीं होना चाहिए, उसने बोला हम सब परमेश्वर की संतान हैं। उसने कहा मैं एक कैथोलिक याजक को जानता हूँ जो सर्वव्यापी है, देखो जो हर जगह उपस्थित रह सकता है। अब तुम सर्वज्ञानी हुए बिना सर्वव्यापी नहीं हो सकते, यहाँ तक परमेश्वर भी सर्वव्यापी नहीं है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी जो कि उसे सर्वव्यापी बनाता है, वह सब कुछ जानता है, लेकिन एक अवस्था में होने के लिए उसे दूसरी एक अवस्था में होना है। सर्वज्ञानी की अवस्था में होने पर वह सर्वव्यापी हो सकता है, कारण वह सब कुछ जानता है और इसे पहले से जानता था। वो जानता था संसार का आरंभ होने से पहले कितने पिस्सू, जू, कितने कीड़े और कितनी बार वे अपनी आंखें झपकाएंगे, और इसके बारे में सब कुछ जानता है, देखो क्योंकि वह सर्वव्यापी है। अनंत हुए बिना आप सर्वज्ञानी नहीं हो सकते, और केवल एक ही चीज अनंत है, परमेश्वर, आमीन। और फिर हम, ये क्या है, ये शैतान है, उन्हें सीधे उस घात करने के लिए ले जा रहा है, उसमें से हर एक उसमें जा रहा है, ठीक वैसा ही जैसा बाइबल ने कहा, और यहाँ है ये, देखो पेंटिकॉस्टल के बीच में आकर और उन्हें ठीक सीधा वैसे ही खींचता है जैसे क्या ही समय है। ओह, उस गवाही के बाद किसी ने मुझसे कहा, मैं ये अच्छी बात थी कि मैंने बहुत कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद वे मुझे वहाँ जेल में डाल देते, लेकिन मैंने अभी सोचा वहाँ है ये, वे लोग जिसे सिखाया गया है जानता है, बुद्धिमान उनके परमेश्वर को उस दिन पर जान लेंगे, इसे दानियल में कहा, जी हाँ श्रीमान, देखना बुद्धिमान उनके परमेश्वर को जान जाएंगे, वे इन बातों के लिए देख रहे हैं। लेकिन जब मैंने यह होते देखा और पेंटिकॉस्ट उसके साथ वहाँ खड़े होते हैं, यहाँ तक ओरल रॉबर्ट्स ने भी मुझे इस तरह से देखा, मैंने कहा ओ प्रभु, लेकिन एक शिक्षा के साथ वहाँ खड़ा हुआ, चमकाया हुआ और इत्यादि, आप जानते हैं परमेश्वर उसके लोगों को इस तरह से नहीं चमकाता है, वह शिक्षा के साथ उसे नहीं चमकाता है, वो नम्रता में चमकाता है, अपने प्रकट वचन की सामर्थ में उस दाने के आकार को दिखाते हुए जिसमें से ये निकला था। अब किसी ने मुझसे कहा भाई ब्रैनम, कहा एक बात है जो मैं आपके बारे में नहीं समझ सकता, मैंने कहा वो क्या है, वहाँ एक हॉल में खड़ा हुआ, मुझे लगता है बहन डॉच और वे, जब मैंने बिल से हाथ मिलाया और वहाँ खड़ा हुआ था और सब लोग कोने कोने में और लोगों का सारा जत्था घुमा, एक सेवक उसके रास्ते में आगे बढ़ा, कॉलर घुमा हुआ, उसने कहा ऐसा क्यों है कि आप हमेशा लोगों को परेशान करते हैं, उसने बोला वे लोग विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के सेवक हो और आप उनके प्रति और कोमल और मधुर और इत्यादि बनो, कहा हर बार जब मैं आपको सुनता हूँ उठकर आप महिलाओं को छोटे बाल रखने के विषय में चिल्लाते हैं और छोटे कपड़े पहनने के विषय में और मेकअप को लगाने पर और इन सारी अन्य चीजों पर और लोगों को चिल्ला देते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे कितने ठंडे और औपचारिक और बुरे हैं, कहा आप ऐसा क्यों करते हैं, कहा वे लोग आपसे प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के प्रेम करने वाले पुत्र कैसे हो सकते हैं और इस तरह के काम को करते हैं, मैंने कहा प्रभु मैं इस चतुर व्यक्ति को उत्तर देने पाऊं, देखा आप बस मुझे उसे उत्तर देने दीजिए, कहीं तो यह उसे अपनी ही रस्सी पर लटका देगा, जी हाँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा महोदय, क्या आपने कभी संगीत के बड़े निर्माता के बारे में पढ़ा है, वो बीथोवेन नामक महान संगीतकार? उसने कहा ओह जरूर, मैंने बीथोवेन के बारे में पढ़ा है। मैंने कहा उसने शायद रद्दी की टोकरी को रद्दी कागज से भर दिया होगा, लेकिन वो दुनिया को सर्वोत्तम रचना को देता था। उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला और ना एक और शब्द कहा। मैंने कहा जब वो प्रेरणा के नीचे अपने अध्ययन में बैठा होता था तो वह कुछ तो लिखता था। वो अपने अध्ययन में जाता और प्रार्थना करता, यह सही नहीं होता था तो वो उसे फाड़ देता और कूड़ेदान में फेंक देता। लेकिन जब वो उसमें से होकर गया पूरी तरह प्रेरणा में, दुनिया के पास एक सर्वोत्तम रचना थी। ओह वचन कैसे काटता है, लेकिन ये सर्वोत्तम रचना को उत्पन्न करता है, सारी भूसी और डंठल को निकाल कर दूर करता है, यह सर्वोत्तम रचना को सामने लाता है। समय पर बाहर निकलने के लिए मेरे पास 7 मिनट हैं, आपको कुछ तो बताने के लिए जो परसों के दिन घटित हुआ। 3 जुलाई मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, यहाँ इस केंद्र पर, शॉपिंग केंद्र यहाँ से ठीक बाहर। मैं पिघले में रोम में फ्रांस में रहा हूँ और मैं न्यूयॉर्क शहर लॉस एंजेलिस में रहा हूँ, लेकिन महिलाओं का सबसे गंदा झुंड मैंने अपने जीवन में जेफरसन मिले इंडियाना में देखा है। मैंने अपने जीवन में इतनी अधिक मलिनता और गंदगी कभी नहीं देखी जितनी मैं उन लोगों के बीच देखता हूँ। मैं वहाँ तब तक बैठा रहा जब तक मेरा हृदय लालायित नहीं हो गया और प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया था। अब मैं दर्शन को बताने जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं इसका अनुवाद कर सकता हूँ, लेकिन मैं पहली बार दर्शन को बताने जा रहा हूँ। मैं एक अवचेतना के अंदर चला गया और जब मैं चला गया तो मेरे साथ कोई तो था। मैंने उस व्यक्ति को नहीं देखा, यह सिर्फ एक आवाज थी। और मैंने देखा और जब मैंने इस तरह देखा, उसने कहा पूर्व दर्शन के लिए दुल्हन आती दिखाई देगी। और मैंने देखा मेरे पास आते हुए, और मैंने सबसे अधिक साफ सुथरे कपड़े पहने महिलाओं का सबसे आकर्षक झुंड देखा जिसे मैंने अपने जीवन में अब तक कभी देखा था। लेकिन उनमें से हर एक ऐसा दिखाई दिया, अलग कपड़े पहने हुए थी, उन सभी के लंबे बाल थे और उनकी लंबी आस्तीन और स्कर्ट और इत्यादि थे। युवा महिलाएं, वे एक तरह की, मैं कहूंगा लगभग 20 वर्ष की दिखती थी। अब मेरे सामने बाइबल खुली है, देखा, मैं केवल वही कह सकता हूँ जो मैंने देखा। यदि आप कहते हैं आप किसकी ओर देख रहे हो, मैं एक घड़ी की ओर देख रहा हूँ। आप किस ओर देख रहे हो, मैं लोगों के लिए देख रहा हूँ, लोगों की ओर देख रहा हूँ। आप किस ओर देख रहे हो, मैं बाइबल की ओर देख रहा हूँ। यही तो है, मैं सच्चाई को बता रहा हूँ, यही है जो मैं देखता हूँ। और मैं केवल वही कह सकता हूँ जो मैंने देखा है। मैं नहीं जानता कि यह क्या है, इसके बारे में सब कुछ मुझे बस आपको बताना है। लेकिन जब यह दुल्हन, वह सही देख रही थी, वह एक मुझसे बात कर रहा था और मैं एक साथ खड़े थे, उसकी आंखें, वह मेरे जीवन में अब तक के सबसे साफ सबसे प्यारे दिखने वाले लोग थे। ऐसा लगता है कि यह एक दर्जन या अधिक हो सकते थे, बस मैं नहीं जानता कि कितने पंक्तिबंद थे, लेकिन वहाँ बस उनके समूह में ही थे। और वो मधुरता से चाल ढाल के साथ वहाँ से गुजरी और उसकी आंखें ऊपर उठती हुई देख रही थी जब वह गुजर रही थी। ओह वह सुंदर थी, मैंने उसकी ओर देखा। और जब वो वहाँ से गुजरी और उसने कहा अब हम पूर्व दर्शन करेंगे, कहा यही वो दुल्हन है, अब हम कलीसियाओं का पूर्व दर्शन करेंगे। और वे आए, मैंने उन्हें आगे आते हुए देखा। और जब वे आगे आए तो हर एक जन ऐसा लगता है हो गया, मैंने अपने जीवन में ऐसा गंदा झुंड कभी नहीं देखा। और जब उसने कहा अगला झुंड, मैंने एक शोर को सुना और उसने कहा अगला झुंड, कहा यहाँ अमेरिकी झुंड आता है। अब मैं एक अमेरिकी हूँ, लेकिन इसने मुझे दुखी कर दिया। मैं मिले जुले श्रोताओं में इतने बड़े बड़े शब्दों को बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि यह कह सकूँ कि क्या बात जगह ले रही थी। मैं और आपको लकीरों के बीच पढ़ना होगा, लेकिन जब वे महिलाएं आ रही थी तो उनमें से जो प्रधान थी वो एक चुड़ैल थी। उसकी बड़ी लंबी नाक और बहुत ही बड़ा मुंह था, और वे सब यहाँ पर नीचे निचले प्रकार के किसी वस्त्र को पहने हुए थी, लेकिन ऊपर सिर्फ एक पट्टा था, वो बस एक छोटा सा पट्टा, लगभग आधा इंच का पट्टा, जो ऊपर की ओर सरका हुआ और इस तरह उनके चारों ओर लपेटा हुआ था, और प्रत्येक महिला के पास किसी न किसी पर। आप में से बहुत से लोग वर्षों पहले याद होगा जब हम उस कागज को काटते थे, आप जानते होंगे अखबार के पन्ने को, और एक पुरानी कागज की उड़न पतंगे बनाते। कितने लोगों को ये याद है, आप जानते हैं क्यों? मुझे लगता है कि वे इसका उपयोग त्योहार में करते हैं, आप जानते हैं, उस तरह नीचे लटकता हुआ झालरदार कागज, लेस लगा हुआ कागज, उनके नीचे कुछ तो पकड़े हुए होता था, इस तरह से उनके नीचे कुछ तो पकड़े हुए, ये सारा भाग खुला हुआ होता था, और हरेक के बाल बहुत ही छोटे कटे हुए थे, और इस तरह से घुंघराले दिखने वाली चीजें, बहुत ही छोटे कटे हुए बाल, और मेकअप से भरा हुआ पूरी तरह से कुछ और नहीं सिवाय गली की वेश्याओं की तरह लग रही थी, और वे इस कागज को लगाकर चल रही थी, और अश्लीलता। अब ये वही कागज था जो उनके सामने लटका हुआ था, लेकिन जब वे पूर्व प्रदर्शन के स्थान से होकर गुजरी तो उनके पीछे, और ये देखकर जिस तरह से वे करते जा रही थी, उनके सबसे आगे और उनके पीछे के भाग में, और वे किस तरह से दिखावा कर रही थी, मैंने कहा क्या ये कलीसिया है? और वहाँ वो चली गई, और वे यहाँ इस ट्विस्ट एंड रोल या आड़े टेढ़े गीतों को गा रही थी, आप समझते हैं, या आप जो भी इसे कहते हैं, आगे निकल जाती हैं, इसे गाती हैं, और वहाँ से गुजरते हुए, मैंने कहा क्या ये कलीसिया है? और मैं वहीं खड़ा था, और मेरे मन में मैं रो रहा था, और ये चुड़ैल मेरे विचार के अनुसार ये संसार में कुछ और नहीं, लेकिन वो एक, वो कलीसियाओं का विश्व परिषद है, जो उन्हें सीधे उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ वो जा रही थी। ये बाईं ओर चली गई और उस गड़बड़ी में ओझल हो गई, अभी भी इस संगीत को बजाती हैं और बहुत अजीब सी आवाजें करती हैं और उसके शरीर को हिलाती हैं एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से और फिर उसी तरह से ऐसे ही चलती हुई आगे बढ़ती हैं। और मैंने तब अपने सिर को झुकाने लगा और उसने कहा रुकना, दुल्हन को अवश्य ही फिर से आना है। और मैंने देखा और यहाँ वे फिर से आती है, और वे एक प्यारी सी दिखने वाली छोटी महिलाएं वहाँ से होकर गुजरी, वे सब ठीक मेरी ओर देख रही थी जब वे वहाँ से गुजर रही थी, और मैंने ध्यान दिया कि हरेक ने अलग ही कपड़े पहने हुए थे, और पीछे हरेक के लंबे बाल लटक रहे थे, और इसे इस प्रकार से चारों ओर घूमे हुए थे, हो सकता है जर्मनी हो या इसी तरह से कोई तो होगा, और मैंने उन्हें देखा, और फिर जैसे ही वे जाने लगे, उनमें से दो या तीन जो पीछे की ओर थी एक तरह से पंक्ति से बाहर हट गई, और मैं उन पर चिल्लाने जा रहा था, और वे फिर से पंक्ति पर वापस जाने की कोशिश कर रही थी, और मैंने उन्हें देखा, बस दर्शन धुंधला पड़ गया और बदल गया मुझ में से। अब यहाँ पर उसका अनुवाद है, वो कारण अब याद रखना, मैंने अभी अभी लिखा था, मैंने लिखना समाप्त नहीं किया था, मैंने अभी तक इन बातों को लिखकर नहीं रखा था, लेकिन आज सुबह प्रचार में मैंने पकड़ लिया कि यह क्या था, ठीक मेरे उपदेश में। क्या आपने ध्यान दिया, कलीसिया सिर्फ दृश्य में आई? अब यही सच्चाई है मित्रों, स्वर्गीय पिता जो वचन को लिखता है जानता है कि मैं सच्चाई को बता रहा हूँ, समझे, मैं जानता हूँ कि मैं केवल सच्चाई को कहता हूँ, और कुछ मिनट पहले तक ये नहीं जानते हुए ऐसा दिखा, या बस अभी अभी देखो, क्या आपने ध्यान दिया, दुल्हन दो बार सामने दृश्य में आई, पहला बीज और दूसरा बीज, उनमें दोनों ही बिल्कुल एक ही हैं, और जो कारण था कि वे भिन्न थी, अलग अलग भागों के कपड़े पहने हुए थी, वो सभी देशों से आएंगी, यह दुल्हन को बनाएंगी, हरेक के लंबे बाल थे और कोई मेकअप नहीं था, और वास्तव में सुंदर लड़कियां थी, और वे मेरी ओर देख रही थी, यह सभी राष्ट्रों से निकलने वाली दुल्हन का प्रतिनिधित्व कर रही थी, समझे, उस हरेक ने एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया जब वे पूरी तरह से वचन के साथ पंक्ति में कदम ताल कर रही थी, समझे, और फिर मुझे उसे देखना होगा, यदि मैं नहीं देखता तो वचन के साथ पंक्ति से बाहर कदम रखेंगी, जब वो वहाँ से होकर गुजर रही हैं, यदि वो बाहर आती हैं, हो सकता है यह मेरा समय होगा जब मैं समाप्त करता हूँ, देखो मैं जब पूरा कर लेता हूँ या ये जो भी है, क्या वे वापस जा रही थी, अपनी पूरी कोशिश कर रही थी और वापस आ रही थी बस पंक्ति में आने के लिए, कारण वे कहीं तो और देख रही थी, उस कलीसिया की ओर देख रही थी जो बस गड़बड़ी के अंदर चली गई थी, लेकिन दो पंक्ति के सामने वाली वो कभी नहीं गई। जो पीछे वाली थी उनमें से सिर्फ दो या तीन दाहिने हाथ की ओर थोड़ा सा पंक्ति से बाहर कदम रखी हुई थी, और ऐसा लग रहा था जब वे जा रही थी तो पंक्ति में वापस आने की कोशिश कर रही थी, वे मेरे सामने से होकर गुजरी थी, ओह यहाँ से उस दीवार तक आगे जा चुकी थी और मैं वहीं पर खड़ा हुआ था, और फिर मैंने देखा कि ये सब बाहर निकल रही हैं और छोड़कर जा रही हैं। लेकिन आप ध्यान दें, कलीसिया केवल एक बार दृश्य में आई, प्रत्येक राष्ट्र कलीसिया, लेकिन दुल्हन दो बार आती है। देखिए ये क्या था, अब इसे नहीं जानते हुए, लेकिन आज सुबह मेरे संदेश के साथ इसे देखें, इसे नहीं जानते हुए देखा। बीज निसिया में भूमि में गिरा, यह मूल बीज था और वह इन संप्रदायों की प्रक्रिया के जरिए से आती है जो केवल एक बार अस्तित्व में आती है, लेकिन दुल्हन अंत के दिनों में फिर से लौट कर आती है। मैं वापस लौटाऊंगा। देखिए सर्वोत्तम रचना को लाया गया है, यही कारण है कि वह दृश्य में देखी गई, दूसरी बार पूर्व दर्शन में आई। पहली बार पूर्व दर्शन में आई थी, फिर दूसरी बार वो पूर्व दर्शन में आई थी, और वो दूसरी बार सिद्ध रूप से थी जैसे वो पहली बार थी। हे परमेश्वर दया करें, तुरंत ही तुरंत ही तुरंत ही उस जीवन दाने में आ जाओ, बहुत ही जल्द। अन्य सारे कभी भी और नहीं दिखाई दिए, वे निकल गए फिर कभी भी वापस नहीं आने के लिए, लेकिन दुल्हन वापस आती है क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा थी, परमेश्वर वो महान मूर्तिकार ने उसे एक सर्वोत्तम रचना बनाया है, क्योंकि यह उसकी पहली सर्वोत्तम रचना का एक टुकड़ा है, जैसे उसने अदन की वाटिका में बनाया और उसमें से एक टुकड़ा लिया और दूसरा बनाया और वह दूषित हो गया और गिर गया था। अब वो इस बार इसे फिर से बना रहा है और उसने इस सर्वोत्तम रचना को आगे लाया और मारा गया था, क्रम वो भाग जिसे मारा गया था उस सर्वोत्तम रचना को फिर से वापस लाने के लिए था। तो सर्वोत्तम रचना और परमेश्वर का पुत्र, सर्वोत्तम रचना और दुल्हन, और यह उसका एक टुकड़ा है जो अवश्य ही वचन को पूरा करने वाला होना है। वचन पूरा हुआ है और हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं। हे जीवित परमेश्वर की कलीसिया, अपने हृदय को झुकाओ और अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाएं। ये बातें सच है। मैं जानता हूं कि ऐसा दिखाई देता है, ऐसी एक बड़ी चीज होगी जैसे कि यह राष्ट्रों में बहुत अधिक फैल जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं था, वो उसके मार्ग को नहीं बदलता। केवल धन्यवादित बने रहें कलीसिया, धन्यवादित बने रहें कि आप वही हैं जहां आप आज हैं यदि आप मसीह में हैं, क्योंकि आप देखते हैं अब और कब वो याद रहे, वो सारा जीवन पुनरुत्थान के लिए ठीक दाने के अंदर इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन डंठल को अवश्य ही जला दिया जाना है, इसका बाकी का भूसी और सब कुछ अवश्य ही नष्ट किया जाना है, और ऐसा होगा। अपने उन संप्रदायों पर भरोसा न करें, आप वचन जीवन परमेश्वर और उसकी सर्वोत्तम रचना में बने रहें। फिर ये सहशताब्दी में क्या है, मसीह और उसकी दुल्हन, वापस सहशताब्दी के वाटिका में, आमीन।
Just my salvation on Calvary.
यही है जहां उसे मारा गया था, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, लेकिन वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। क्या आज सुबह यहाँ कोई है जो आज सुबह उस दाने में नहीं है, और जब जीवन अब अपना आखिरी टुकड़ा भूसी में से खींच रहा है क्योंकि भूसी सूख रही है, कितने लोग जानते हैं कि पेंटिकॉस्टल कलीसिया सूख रही है? ये क्या है? जीवन इसे छोड़ रहा है। सच कहूँ, ये निकल चुका है। और यदि वह दुल्हन पहले से ही पूर्व दर्शन में दिखी थी, मैं सोचता हूँ कि तब क्या दुल्हन पहले से ही तैयार नहीं हुई है? अब हमारे सिर को झुकाए हुए, क्या यहाँ कोई है जो याद करवाना चाहेगा? यदि आपको लगता है कि आप नहीं हैं, मित्रों, यह बहुत ही साफ है। मेरे अपने जीवन में कभी कोई दर्शन नहीं आया था जब तक उसके बाद कुछ घटित नहीं हुआ हो। मैं सच्चाई को बता रहा हूँ। इन सभी समयों में यदि मैंने सच कहा है तो परमेश्वर ने इसे साबित किया है। फिर मैं इस बार भी सच बता रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि हम किस दिन में जी रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि कुछ भी नहीं बचा है। कोई ऐसा राजनेता खड़ा नहीं हो सकता जो इस बात को साफ कर सके। राजनीति, देश खत्म हो चुका है। हे परमेश्वर, क्या आप इतना नीचे उतर सकते हैं कि इसे महसूस कर सके? राष्ट्र खत्म हो चुका है। राष्ट्र नहीं बल्कि बहुत राष्ट्र, यह झुंड में से सबसे अच्छा है और यह जा चुका है। फिर यदि राष्ट्र खत्म हुए हैं, दुनिया खत्म हुई है और कलीसियाएं, मेरी राय में उनके पास सबसे अच्छे पेंटिकॉस्ट थे, लेकिन ये खत्म हुए हैं। हे परमेश्वर, हम पर दया करें। यदि आप उसे नहीं जानते हैं तो कृपया जल्दी करें, जल्दी करें। यदि आप जीवन को महसूस करते हैं तो बाहर निकलें, अपने पाप से बाहर निकलें, उस चीज से बाहर निकलें जिसमें आप हो। दाने के पास जाओ जल्दी से, तुम डंठल में या भूसी में मर जाओगे। प्रार्थना करें जब हम अभी गाते हैं, मैं उससे प्रेम करता हूँ। यह अब आप पर निर्भर है। हमारी कोई संप्रदाय नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास केवल मसीह है। उसके साथ आराधना करने के लिए आपका स्वागत है। हमारे साथ उसके आने तक हम आपका नाम किताब पर नहीं डाल सकते। हमारे पास कोई किताब नहीं है। हम आपका नाम जीवन की किताब में चाहते हैं। आप केवल जन्म के द्वारा ही ऐसा कर सकते हैं। क्या आप इसे ठीक अभी नहीं करेंगे? मसीह से नए जीवन के लिए मांगे कि आपको अंदर लाए, अपना नाम उसकी किताब पर डालें। यदि ये नहीं है, फिर आप हमारे साथ संगति कर सकते हैं। हम आपको पाकर प्रसन्न होंगे। मैं प्रिय परमेश्वर, अब प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करें कि सूची को लें, देखें कि क्या हम उसमें हैं। आपने हमसे प्रेम किया, आप हमारे लिए मारे गए थे और हमने आपको परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आप प्रत्येक को बुलाएंगे। प्रभु, मेरे बच्चों, मेरे प्रियजनों, मेरे मित्रों से बात कीजिए। इसे प्रदान करें प्रभु, ठीक कभी यीशु मसीह के नाम के द्वारा। कोई भी बहुत देर तक प्रतीक्षा न करने पाए प्रभु, बहुत ज्यादा करीब लग रहा है। फसल सचमुच पक चुकी है। इन दिनों में से एक दिन में परमेश्वर का बड़ा दल देश में फैल जाएगा। तिनके चारों ओर उड़ेंगे, लेकिन गेहूं को उठाकर खलियान में रखा जाएगा, क्योंकि उसी में जीवन है। इसे प्रदान करें प्रभु। प्रत्येक विनती का उत्तर दिया जाना है। प्रत्येक प्रार्थना को आपके सामने प्रकट किया जाना है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप यहां जो कोई भी है उसे नाश नहीं होने देंगे प्रभु। वे तकलीफ के नीचे बैठे हैं, वे सैकड़ों मील गाड़ी चलाकर आते हैं और जिस किसी चीज की हमें आवश्यकता है वो हमें दीजिए प्रभु, जो कुछ हमारे भले के लिए है प्रभु, ना ही वो जो हमारी दृष्टि में अच्छा है लेकिन जो आपकी दृष्टि में अच्छा है। हम एक पवित्र कुंवारी की नाई खड़े होना चाहते हैं, जिसे ताड़ना दी गई है, परमेश्वर की फटकार खाई हुई, ताकि हमें हमारे पापों से शुद्ध किया जा सके। और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। मैं नहीं जानता कि कैसे प्रार्थना करना है। हम सामर्थ्य परमेश्वर से बात कर रहे हैं और वहाँ कौन सा मनुष्य हुआ है, कौन सा मरणहार मनुष्य जो जीवित परमेश्वर के सम्मुख सही प्रकार की प्रार्थना कर सकता है। लेकिन प्रभु, मेरे गलत उच्चारण वाले शब्द और गलत जगह पर मेरी संज्ञा और सर्वनाम के उच्चारण, यदि आप एक दिन उस छोटे लड़के के लिए क ख ग को लेकर और एक वाक्य को बना सकते हैं, तो आप मेरी संज्ञाओं और सर्वनामों को छोड़ सकते हैं और केवल वही देख सकते हैं कि मैं क्या विश्वास करता हूं। प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं, और मैं यहां हर एक के लिए विश्वास कर रहा हूं, और मैं विश्वास के द्वारा उन्हें उस वेदी पर ला रहा हूं। प्रभु, जहां हमारे और महान यहोवा के बीच उसके पुत्र यीशु का लहू है, और लहू हमारे लिए बोलेगा। जब आपने उसे कलवरी पर मारा, आपने कहा बोल, उसकी सुनो। और लहू, बाइबल ने कहा, पुराने नियम में मेमने के लहू से भी बड़ी उत्तम बातें करता है, क्योंकि मसीह का लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है, बहुत महान बातें, और बोलता है प्रभु हमारे लिए छुटकारे को, जब हम लहू के द्वारा पुकारते हैं। जीवन के महान पिता, हमें शामिल करे प्रभु। यदि हमने पाप किया है तो इसे हमसे दूर कीजिए। हम उस तरह से नहीं होना चाहते प्रभु, हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है। और हम एहसास करते हैं कि हम बहुत ही भयानक बुरे तरीके से जी रहे हैं। जैसा कि हमने आरंभ में कहा था, हम उबर खाबड़ रास्तों में से होते हुए एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। रास्ते में रोशनी कम है, लेकिन हम प्रकाश को लिए हुए हैं। हो सकता है कदम दर कदम देखें, जैसे जैसे हम अब चलते हैं, जब तक हम नहीं मिलते मुसाफिर के प्रगति की तरह, जब तक हम अंत में पहाड़ी की चोटी तक नहीं पहुंच जाते। हे चरवाहे, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। महान यहोवा, अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। और हम जानते हैं कि हम एक सर्वोत्तम रचना से बहुत दूर हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें जहां से काटा गया था, जो सच्ची सर्वोत्तम रचना है, और हम उस पर भरोसा करते हैं। बस हमें उसके पास ले चलिए प्रभु, इसे प्रदान करे प्रभु। यहाँ के सारे बीमार लोगों को चंगा करे प्रभु। हमने उसे मारा कुटा और सताया हुआ समझा, लेकिन वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया था। परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना पर प्रहार किया गया, और वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। बीमारों को चंगा कीजिए प्रभु। अब अपनी दिव्य उपस्थिति में, जब हम जानते हैं कि आप यहाँ हैं, हमारे प्राणों को, हमारे हृदय को सारी बुराई से, सारे बुरे विचारों से, सारे बुरे संबंध से शुद्ध करें। सारी चीजें जो गलत हैं, हमें साफ करें। और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमारी बीमारी को चंगा करेंगे, और हम ये महसूस करते हुए यहाँ से जाएं कि हम आपके पवित्र किए गए बच्चे हैं। और लहू हमारे ऊपर है, हम लहू में से होते हुए, वचन में से होते हुए बोलें। इसे प्रदान करें प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर, इन रुमालों के ऊपर अपनी उपस्थिति से उनका अभिषेक कीजिए प्रभु। होने पाए ये जहाँ कहीं भी जाएं, आपकी उपस्थिति उनके साथ रहे। जिस किसी पर भी रखा जाए, किसी भी बीमार शरीर पर, होने पाए वे चंगे हो जाएं। और जो भी हो, यदि कहीं टूटा हुआ घर है तो उसे सुधार दीजिए प्रभु। महान मूर्तिकार, इसे प्रदान करे प्रभु। हमें सांचे में ढालें और हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाएं। हम विश्वास करते हैं कि दुल्हन अपनी आखिरी चमक को ले रही है। इसे पूरे संगठन से, पूरी तरह से कुल मिलाकर प्रहार किया जाएगा, और फिर बड़ी कटनी यहां पर होगी। तब तक के लिए प्रभु, उन्हें आपकी सेवा करने के लिए स्वस्थ और खुश रखें। यीशु के नाम में, آمین. کیا آپ سچ مچ اس سے پریم کرتے ہو؟ اب آپ سمجھ گئے کہ میں آپ کو کیوں ڈانٹتا ہوں؟ ایسا اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں آپ سے پریم کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں آپ سے پریم نہیں کرتا، میں آپ سے پریم کرتا ہوں. میں سوامی کے لیے ایک سروتم رچنا کو چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے مجھے اس طرح سے کچھ تو پھاڑنا پڑ سکتا ہے، لیکن میرے پاس ایک سروتم رچنا ہوگی اس میں سے کچھ ہی دنوں میں، یدی میں اسے اس وچن پر صحیح سے بنائے رکھوں. صحیح ہے. اب یشو نے کہا، جب تم ایک دوسرے کے لیے پریم کرو گے تو یہ سارے لوگ جان جائیں گے کہ تم میرے چیلے ہو. ہمیں ایک دوسرے سے اتنا پریم میں ہونا چاہیے. آئیے ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑیں.
When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again. Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give. Take it everywhere you go, precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven, precious name, oh.
اب یاد رکھیں آپ کی یاترا میں،
ٹیک دا نیم آف جیزس وِد یو ایز ا شیلڈ فرام ایوری فیئر وین ٹیمپٹیشنز راؤنڈ یو گیٹ واٹ یو ڈو دین دیر جسٹ بریتھ ہولی نیم ان پریئر. Oh, precious name, oh, how sweet, oh, power and joy of heaven, precious name, oh, how sweet, oh, power and joy.
آئیے سروں کو جھکائیں. اوہ، مجھے گیت گانا پسند ہے.
God.